रात और जॉयस को गाते हुए सुनना। क्या आप जानते हैं कि यह अपने आप में एक अद्भुत बात है? वो छोटी लड़की, वो यह सब भला कैसे सोच सकती है? और हर रात उसके पास हमारे लिए एक नया होता है। वो यह सब कैसे सोच सकती है? ये वास्तव में छोटा सा विख्यात मन है। प्रभु उस बच्ची को आशीष दे। अब कल 2:30 बजे इंडियाना के चार्ल्स टाउन में अंतिम संस्कार ग्रह में जाना है। हमारी प्यारी देवगंत बहन कॉलिंस, हम उन्हें अंतिम सम्मान देंगे अंतिम संस्कार ग्रह में और कब्र पर कल दोपहर के समय। जो एक समय जीवित थी जैसे आज रात आप जीवित हैं, और वो उस पर्दे के उस पार चली गई है जहां आप कभी न कभी होंगे। और वे सब जो सभा में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उनका आने के लिए स्वागत है। इससे निश्चित रूप से कॉलिंस परिवार के लिए एक बड़ी सहायता होगी यह जानकर कि भवन के लोग यहाँ हैं, जहाँ वे सब इतने लंबे समय से कलीसिया में गए हैं और इत्यादि। हमें आपको वहाँ देखकर खुशी होगी। और मैं सोचता हूँ हमारे प्रिय भाई मैकेनी, जिन्होंने मेरे भाई के अंतिम संस्कार में प्रचार किया बहुत वर्ष पहले, जो अंतिम संस्कार का मुख्य भाग है, और मुझे आकर और अंतिम संस्कार की सभाओं में उनकी सहायता करने के लिए कहा गया। अब मुझे बस आज रात थोड़ी देर हो गई थी। मेरे पास बहुत सारी गतिविधियों या बहुत सारी योजनाएं होती हैं। मैं नहीं जानता कि किस ओर जाना है। बहुत सारे फोन आते हैं और ये बीमार लोग होते और दुर्घटना होती है और लोग फोन करते हैं कि आ रहे हैं यहाँ तक जल्दी वापस आने के लिए। मैं अभी कुछ समय पहले तुरंत ही लुइस विले से निकला और बहुत से फोन छोड़कर, जो सचमुच बहुत जरूरी है और अवश्य ही किया जाना है। मैं सोचता हूँ अभी आज रात को ही। और अब हमारे लिए प्रार्थना करें जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और आज सुबह मैं अपने मूल विषय में कभी नहीं पहुँच पाया, इब्रानियों की किताब के 7वें अध्याय तक। और जब हम आज रात इसकी ओर जा रहे हैं, मैं भाई ग्राहम स्नेलिंग की सभा के बारे में घोषणा करना चाहता हूं, जो वहां ऊपर यहां तंबू पर ब्रिंगम एवेन्यू के अंत में होगी। यदि प्रभु ने चाहा तो मैं बुधवार की रात वापस आना चाहता हूं, और वहां हम एक किसी रात तय करेंगे कि हम एक प्रतिनिधित्व के रूप में आगे जाएंगे इस सप्ताह में कभी तो भाई ग्राहम से सभा में भेंट करने के लिए। वो एक कहते हैं अच्छी भीड़ रही और वो इस सहायता के लिए हमारे आने की प्रशंसा करेंगे। भाई ग्राहम स्नेलिंग, आप में से कोई भी सभा में उपस्थित हो रहा है या चाहता है, यह यहाँ ऊपर ब्रिंगम एवेन्यू के ठीक अंत में है। कोई भी आपको बता सकता है कि यह कहाँ पर है? ठीक खेल के मैदान के अंत में तंबू लगे हुए हैं। वो आपके सहयोग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमने एक आराधनालय की नाई उनके साथ अपना सहयोग देने का 100% वादा किया है। इसलिए हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जल्द ही हम स्थान पर आ रहे हैं, प्रभु ने चाहा तो, इब्रानियों के 11वें अध्याय में कुछ ही रातों में, यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो। और वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा समय भी होगा। ओह, प्रभु ने आज सुबह हमें एक अद्भुत तरीके से आशीष को दिया। किस तरह से उसने हम पर अपनी आत्मा को ढेला, और अब आज रात हम उससे फिर से ऐसा करने की अपेक्षा कर रहे हैं, और फिर बुधवार की रात को और आगे भी। और जिन रातों को मैं नहीं रहता हूँ, यदि मैं बाहर हूँ तो भाई नेविल इसे लेने के लिए यहाँ पर होंगे। मैं कभी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस घड़ी यहाँ हो और दूसरी घड़ी कैलिफोर्निया में बुलाया जाए। देखो, आप नहीं जानते कि प्रभु कहाँ पर भेजेगा। यही कारण है कि मेरे लिए यात्रा का कार्यक्रम बनाना और यह कहना कठिन है कि हम ऐसा और ऐसा करेंगे। मैं कोई काम को करना शुरू कर सकता हूँ, पर प्रभु मुझे कहीं और भेज देगा, समझे? इसलिए हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा, लेकिन यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम ऐसा कहते हैं। और मुझे लगता है कि हमें आदेश दिया गया है या आज्ञा दी गई है कि बाइबल में यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम इन इन कामों को करेंगे। इसलिए यदि हम कुछ भी करने के वादों को नहीं करते कि हम या वादों को पूरा करें, हम महसूस करते हैं कि हो सकता है प्रभु ऐसा होने के लिए नहीं चाह रहा था। एक दिन हम अटक गए थे भाई रॉबर्टसन और भाई वुड और मैं, और हम सोचने लगे क्यों। वहाँ बैठे हुए थे, एक नक्शे को देख रहे थे ठीक नीचे की ओर आते हुए, और हम एक सड़क पर फिर से सीधे उत्तर की ओर 50 मील की दूरी पर चले गए। और जब मैं लगभग 14 वर्ष की उम्र का था, तब से मैं उस महामार्ग पर यात्रा करते आ रहा हूँ, और मैं सोचने लगा कि मैंने इसे हमेशा किस तरह से किया। हम तीनों ही वहाँ पर खड़े हुए थे, हम सभी ने उस महामार्ग की यात्रा की है, सीधे नक्शे की ओर देखते हुए 130 पर बढ़ रहे थे इलिनॉइस में इसे होते हुए, और जरा से मोड़ को लिया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सूरज हमारे सामने की बजाय हमारे पीछे था, हम दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर जा रहे थे। और पहली बात जो आप जानते हैं, सड़क को पार किया, मैंने कहा यह सही रास्ता नहीं है, वहाँ आगे की ओर देखा और पता चला हम मार्ग से 50 मील बाहर आ गए हैं, सीधे वापस चले गए। फिर जब हम वापस आए तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा आप जानते हैं क्यों, हम हो सकता है कि प्रभु ने हमें इस तरह बाहर से लेकर गया हो ताकि यहाँ नीचे कहीं भी एक भयानक दुर्घटना होने से बचाए, जो कुछ तो और कर सकता था। हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें बस यही सब मन में रखना है। अब आज रात हम अब एक छोटे से शिक्षा के विषय को आरंभ कर रहे हैं, और यदि मैं नहीं सोचता कि हम ले पाएंगे, हो सकता है हम आज रात बोले कलीसिया को शिक्षा देने का यह महान अध्याय जो दशमांश पर है, और यह एक महान विषय है जिस पर हम हफ्तों और हफ्तों तक बने रह सकते हैं, उस एक बात पर कैसे अब्राहम ने मलकीसेदिक को दशमांश दिया, और चाहे यह अनिवार्य है। क्या यह पंखा वहाँ किसी को तकलीफ पहुँचा रहा है, क्या आप बजाय इसके इसे बंद करेंगे? यदि यह किसी को तकलीफ दे रहा है, उनके चेहरे पर किसी भी पंखे से हवा आ रही है, यदि ऐसा है तो केवल अपने हाथ को ऊपर उठाएं, और या तो बस संचालक में एक किसी को भेजेंगे, किसी को तो यहाँ भाई के पास भेजेंगे, वो आपके लिए इसे बंद कर देगा। और मैं इसे एक तरह से अपने आप से दूर रखता हूँ, मुझे गर्मी होती है और मुझे पसीना आने लगता है, फिर सबसे पहले जो आप जानते हैं मेरा गला कर्कश हो जाता है, तो यह आप पर है, इसलिए यह मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि आप अब आराम से रहें, हम आपका बहुत अधिक समय लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम सीधे वचन की ओर देखेंगे। और इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए हम बस कुछ क्षण के लिए लेखक से बात करें। अब स्वर्गीय पिता, हमने जानते कि क्या रखा गया है, लेकिन केवल एक चीज जिसे हम जानते हैं और मानते हैं कि अच्छी चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं, क्योंकि लिखा है न आँख ने देखा न कान ने सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात अपने भंडार में स्वर्ग की खिड़कियों को खोल देंगे और हमें अपने वचन को देंगे। यह कुछ तो ऐसा होगा जो उपयुक्त है, कुछ तो ऐसा जो मसीही लोगों की नाई हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। और जब हम अंदर आए तो हम जो थे उससे कहीं अधिक हमें सुसमाचार पर और अधिक स्थिर बनाए, इसे प्रदान करें पिता, होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को ले और हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक हृदय तक पहुंचाए। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब इस सुबह छठवें अध्याय के अंतिम पद को छोड़ते हुए सो हम सीधे सातवें में जा सकते हैं, जहां यीशु मलकीसेदिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश हुआ है। अब हम पहले तीन पदों को या पहले दो पदों को या मेरा मतलब पहले तीन पदों को पढ़ने जा रहे हैं सातवें अध्याय के, ताकि हम सीधे आरंभ कर सकें। क्योंकि मलकीसेदिक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया, वहाँ आपका दशमांश है। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली न ही आरंभ, जिसके न दिनों का आरंभ है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान बना दिया, सर्वदा याजक बना रहता है। क्या ही जबरदस्त कथन है। अब हमें पुराने नियम में वापस जाना होगा ताकि इन महान आधारों को बाहर खोद कर निकालें, और ओह मैं उन्हें कितना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं, एरिजोना में हम मूल्यवान वस्तु की खोज किया करते थे और हम एक उपयुक्त दिखने वाले मैदान में उतरते थे, श्रीमान मैक एनाली और मैं, और हम एक ऐसी जगह देखते जहाँ ऐसा दिखता था, छोटी छोटी खाइयों में जहाँ एक छोटे छोटे खड्डे होते जिसे वे कहते साफ करना, और मैं वो मुझे नीचे उतारता और मुझे रेत को रगड़ने लगाता और फूंक मारकर इसे उड़ाता और फिर रगड़ता और फूंक मारता इसे उड़ाता, और मैं सोचता कि उसने ऐसा क्यों किया। मालूम पड़ेगा, आप देखना, जब आप रेत को उड़ाते हैं तो ये चमकेगा और सब कुछ, यहाँ तक कि सीसा भी सोने से हल्का होता है, सोना सीसे से भारी होता है। तो जब आप उड़ाते हैं तो बाकी के सभी धातु और रेत और गंदगी उड़ जाएगी, लेकिन सोना जमीन पर ही रहेगा। इसलिए यदि आप यहाँ से ऊपर कुछ धोते हैं तो ये दिखाता है कि वहाँ कहीं तो ऊपर सोने की एक धारी है। इस बारिश ने इन छोटे टुकड़ों को धो दिया है। तो फिर हम फावड़े और इत्यादि को लेते हैं और पहाड़ी को लगभग खोद डालते हैं, इस सोने को खोजने की कोशिश करते हैं, जमीन में छेद करते हैं, उन्हें खोद डालते, डायनामाइट बम को लगाते हैं, इसे उड़ा देते हैं मुख्य शीरा को खोजने के लिए। जब तक हमें मिल न जाए तब तक नीचे की ओर औजार को मारते रहें। अब इसे हम कहते हैं पूर्वानुमान करने वाले, और आज रात हम परमेश्वर के वचन को लेने की कोशिश कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसका उपयोग कर रहे हैं, ताकि सारी उदासीनता और संदेहों को हमसे दूर करे। वे सारी छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें जिनका कोई आधार नहीं है, हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, हम इसे पूरी तरह से उड़ा देना चाहते हैं, ताकि हम इस महिमामय नस को ढूंढ सकें। वो नस मसीह है, और अब होने पाए परमेश्वर हमारी सहायता करे जब हम उसके वचन को पढ़ते और अध्ययन करते हैं। अंतिम पिछले तीन अध्याय लगभग हम सुनने के ऊपर बात करते आ रहे हैं, अभी और उसके बाद मल्कीसेदेक। अब मैं सोचता हूँ कि पौलुस सही अनुवाद को देता है, क्योंकि मल्कीसेदेक शालेम का राजा, शालेम का राजा, और कोई भी बाइबल विद्वान जानता है कि शालेम पहले, यरूशलेम को पहले शालेम कहा जाता था, और वो यरूशलेम का राजा था, उसे देखना। परम प्रधान परमेश्वर का याजक, वो एक बिचवाई है जो अब्राहम से मिला। मैं उसकी वंशावली को लेना चाहता हूँ, इस महान व्यक्ति की, ताकि आप पहले जान सकें कि वो कौन है। इसके बाद आप हम कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था और उसे आशीष दी, इसी को अब्राहम ने दसवां अंश भी दिया, पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। अब देखो धार्मिकता, अब हमारे पास खुद की धार्मिकता है, हमारे पास दिखावटी धार्मिकता है, हमारे पास सभी प्रकार की भ्रष्ट हुई धार्मिकता है, लेकिन एक सच्ची धार्मिकता है, और वो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आती है, और यह मनुष्य धर्म का राजा था। वो कौन हो सकता है? अब वह धार्मिकता का राजा था, यरूशलेम का राजा, धार्मिकता का राजा, शांति का राजा था। यीशु को शांति का राजकुमार बुलाया गया था, और राजकुमार राजा का पुत्र होता है। तो ये मनुष्य शांति का राजा था, तो उसे शांति के राजकुमार का पिता होना है। इसे समझ लिया? अब आइए देखते हैं उसकी वंशावली को थोड़ा आगे लेंगे, यह देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसका न पिता। अब यीशु का एक पिता था, क्या आप यह विश्वास करते हैं? निश्चय ही उसका था न माता। यीशु की एक माँ थी, लेकिन इस व्यक्ति का ना तो पिता था और ना ही माता, न वंशावली है। उसके पास कभी भी ऐसा कोई नहीं था जिससे वो आया हो, किसी भी वंश से वो हमेशा से ही था बिना वंशावली, जिसके न दिनों का आदि है। उसके पास कभी भी कोई समय नहीं था कि उसने कभी शुरुआत की हो, न ही जीवन का अंत। यह परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था, वो यही हो सकता है। अब यदि आप अगले पद को पढ़ते हुए ध्यान देंगे, समझे, यह पहले अर्थ के अनुसार धर्म का राजा है। यह वो स्थान नहीं है जहां मैं लेना चाहता हूं। वो तीसरा पद, और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, क्योंकि यदि वो एक पुत्र था तो उसकी शुरुआत थी, और इस मनुष्य की कोई शुरुआत नहीं थी। यदि वो एक पुत्र था तो उसके पास पिता और माता दोनों होने थे, और इस मनुष्य का न तो पिता था और न ही माता, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था, सर्वदा याजक बना रहता है। अब डॉक्टर स्कॉफिल्ड कहने की कोशिश करते हैं कि यह एक याजकगढ़ था जिसे मलकीसेदक याजकगढ़ कहा जाता था, लेकिन मैं आपको बस कुछ मिनटों के लिए उस पर ले जाना चाहता हूँ। यदि यह याजकगढ़ था तब इसकी एक शुरुआत होनी थी और इसका एक अंत होना था, परंतु इसका कोई आदि या अंत नहीं था, और उसने यह नहीं कहा कि वो एक याजकगण से मिला, वो एक मनुष्य से मिला और उसका नाम मलकीसेदक कहकर बुलाया गया। वो एक व्यक्ति था, ना ही एक संप्रदाय, ना ही एक याजकगण या प्रतित्व। वह पूरी तरह से मलकीसेदक के नाम से एक मनुष्य था जो यरूशलेम का राजा था, न ही याजकगण, लेकिन जो पिता के बिना एक राजा था। याजकगण के पिता नहीं होते, और यह मनुष्य बिना पिता के, बिना माता के था, न ही दिनों की शुरुआत या जीवन का अंत। अब परमेश्वर का पुत्र कौन था? यह यहोवा था, यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, यह कोई और नहीं हो सकता। अब ध्यान दें, वो सदा बना रहता है। उसकी यहाँ एक गवाही है कि वह जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता, उसने कभी नहीं, वो कभी भी और कुछ नहीं था, लेकिन जीवित था, वो सदा बना रहता है। अब यीशु को बनाया गया उसकी समानता में। अब कारण यह है कि परमेश्वर और यीशु में अंतर है। यीशु की शुरुआत थी, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं थी, मलकीसेदक की कोई शुरुआत नहीं थी, और यीशु की शुरुआत थी, लेकिन यीशु को उसकी समानता में बनाया गया। एक याजक हमेशा के लिए बना रहता है। अब जब मलकीसेदक धरती पर था, वह संसार में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, वो यहाँ दैविक शरीर के समान था। अब्राहम उससे एक बार उसके तंबू में मिला, और जैसा कि हमने आज सुबह कहा, अब्राहम ने उसे पहचान लिया, और उसने अब्राहम को बताया कि वो क्या करने जा रहा था, क्योंकि वो संसार के वारिस को अंधा न छोड़ेगा उन चीजों के प्रति जो वो करने जा रहा था। मैं यहाँ एक मिनट के लिए रुक सकता हूँ, ये कहने के लिए परमेश्वर के पास अब भी उसकी कलीसिया के बारे में वही राय है। आप अंधकार की संतान नहीं हो, आप उजाले की संतान हो, और यह हम जो धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और क्या परमेश्वर जिसने अब्राहम के लिए कार्य किया, जिसे धरती का वारिस होना था, और उसने कहा, मैं इन बातों को उस मनुष्य से छिपाए नहीं रखूंगा जो पृथ्वी का वारिस होने जा रहा है, तो वह अपने उन रहस्यों को और कितना अधिक उसकी कलीसिया के लिए प्रकट करेगा जो धरती के वारिस होने जा रहे हैं। दानियल ने कहा, उस दिन वे इधर उधर दौड़ेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, और उसने कहा, बुद्धिमान उस दिन अपने परमेश्वर को जान लेंगे और उस दिन बड़े बड़े कामों को करेंगे, लेकिन दुष्ट स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। वे उसे एक आकार में जानते हैं और एक औपचारिकता में जानते हैं, जैसा कि हमारे पहले विषय में बताया था, लेकिन वे उसे सिद्धता के मार्ग के द्वारा नहीं जानते। और परमेश्वर केवल सिद्धता के जरिए से ही कार्य कर सकता है, क्योंकि वो सिद्ध है, उसका नाम धन्य हो। यह एक सिद्ध माध्यम होना चाहिए, जिसके जरिए से परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि वो सिद्धता के जरिए से कार्य करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने आप को किसी भी तरह से दागदार नहीं कर सकता, और तब इसलिए यीशु हमारे पापों को दूर करने के लिए आया कि हम सिद्ध हो सके, जिससे कि परमेश्वर अपने कलीसिया के जरिए से कार्य कर सके। वहाँ है ये जहाँ रहस्य रखा है, वहाँ है जहाँ दुनिया अंधी है, वहाँ वे कहना चाहते हैं कि आप अपना दिमाग गवा चुके हैं, वहाँ है जहाँ वे कहना चाहते हैं आप नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की बातें इस संसार की बुद्धि के लिए मूर्खता है, लेकिन दुनिया की चीजें विश्वासी के लिए सांसारिक हैं। सो आप एक अलग व्यक्ति हैं, आप एक अलग क्षेत्र में जी रहे हैं, आप अब इस दुनिया के नहीं रहे, आप इस जीवन से एक नए जीवन के अंदर जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर प्रकट करता है न ही संसार को, न ही मनोवैज्ञानिक को, न ही शिक्षित सेवकों को, लेकिन जो हृदय में नम्र लोग हैं, उसके लोग जो दीन हैं, वो उन पर परमेश्वर की महान बातों के रहस्यों को प्रकट करेगा। आपने इसे समझा? अब अब्राहम को संसार का उत्तराधिकारी होना था, माध्यम से अब्राहम का वंश सभी राष्ट्रों को आशीषित करने वाला था। तब परमेश्वर नीचे उतर आया और उससे मनुष्य के रूप में बातें की। अब परमेश्वर हमेशा ही धरती पर रहा है, परमेश्वर ने धरती को कभी भी नहीं छोड़ा है। यदि वो कभी धरती को छोड़ देता तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या होता, लेकिन परमेश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में यहाँ रहा है। ओह, उसके नाम की स्तुति हो। वो उसकी संतान के साथ जंगल में था, वे मिस्र से बाहर निकल रहे थे, एक उजाले के रूप में उसने अब्राहम से एक मनुष्य के रूप में बात की, उसने मूसा से मनुष्य के रूप में बात की, उसने कलीसिया से एक मनुष्य के रूप में बात की, उसका पुत्र यीशु मसीह, और वो आज अपने कलीसिया के जरिए से बोल रहा है, जीवित परमेश्वर की अभिषिक्त कलीसिया के जरिए से, मिट्टी के बर्तनों के जरिए से बोल रहा है, तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूँ। परमेश्वर अब भी बोल रहा है, और संसार यीशु को तब देखता है जब आप उसे प्रस्तुत करते या पेश करते हैं। ऐसे ही संसार देखता है, आप लिखित पत्रियां हो जिसे सभी मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाता है, आपका जीवन बताता है कि आप क्या हैं। अब यह अब्राहम अपने मार्ग पर था, वापस लौट रहा था, हम वापस जाकर और उसके बारे में कुछ ही क्षणों में उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 14वें अध्याय में। मेरा विश्वास है कि यही है। ओह, यहाँ कितनी सुंदर कहानी है। अब हम सब अब्राहम के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कसदियों के देश और उर नगर से किस तरह से बाहर बुलाया और उसे अपने संगी साथियों से अलग होने के लिए कहा। परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं को बुलाता है, वो अलगाव को करता है। अब आज कलीसियाओं के साथ यही समस्या है, वे खुद को पुराने शारीरिक लोगों से अलग नहीं करना चाहते, अविश्वासी से। इसी कारण हम और आगे नहीं जा सकते, हम बस उस एक शारीरिक बहाव में आ जाते हैं और हम कहते हैं, ओह, जिम एक अच्छा लड़का है, यदि वो शराब पीता है, यदि वो, और मैं उसके साथ जुआ घर में जाता हूँ, लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता, मैं उसके साथ पार्टी में जाता हूँ, वे गंदे चुटकुले सुनाते हैं इत्यादि, लेकिन मैं कोई चुटकुला नहीं बताता। उनमें से बाहर आओ, ये सही बात है, अपने आप को अलग करो, उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, प्रभु यूं कहता है। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, अनुचित ढंग से जुए को न जूतो, आप ऐसा न करें, अपने आप को अलग करें। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वह अपने आप को उसके सारे निकट कुटुंबियों से अलग करे और उसके साथ चले। भाई, कभी कभी इसका मतलब कलीसिया को छोड़ना होता है, पौलुस का इसका यह मतलब था, उसे अपनी कलीसिया छोड़नी थी, इसका मतलब बहुतों से था। कभी कभी इसका मतलब घर छोड़ना होता है, कभी कभी इसका अर्थ होता है माता पिता को छोड़ देना और सबको त्याग देना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हर बार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने और परमेश्वर के बीच सब कुछ करना होता है और अकेले उसके साथ चलना है। और वो धन्य मधुर वार्तालाप, वो संगति जो आपके पास तब होती है जब आप स्वयं को अलग करते हैं संसार की वस्तुओं से और शारीरिक विश्वासियों से जो आपका मजाक उड़ाते हैं और आप मसीह के साथ अकेले चलते हैं। कितनी बार मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, उसने कहा मैं तुम्हें इस वर्तमान संसार में माता पिता को दूंगा, मैं तुम्हें मित्र और सहयोगी दूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालांकि सारा संसार आपसे मुंह मोड़ लेता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ रास्ते के अंत तक जाऊंगा। क्या ही धन्य सौभाग्य है कि उस मनुष्य के पास चुनौती है प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए, उसके सारे शारीरिक संबंधियों से खुद को अलग होने के लिए ताकि प्रभु के पीछे पीछे चले। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि अपने आप में सही व्यवहार नहीं कर रहा है और अपने आप को मसीह के रूप में बताता है लेकिन शारीरिक चीजों से प्रेम करता है, ये आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप तुरंत किसी अन्य साथी की तलाश करें, ये सही है। और यदि कोई आपके साथ नहीं चलेगा तो एक है जिसने आपके साथ चलने का वादा किया है, वो है धन्य प्रभु यीशु, वो आपके साथ चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने आप को अलग करो, और मनुष्य की नाई जैसे अब्राहम था वो अपने पिता को भी साथ ले गया, वो उसके भाई के पुत्र को अर्थात भतीजे को साथ लेकर गया, सब उसके साथ लटक रहे थे। और परमेश्वर ने उसे तब तक आशीष नहीं दी जब तक कि उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। मैं यह नहीं कहता कि आप एक मसीही नहीं हैं, तो मैं किसी को मसीहत से नहीं हटा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कहा है तो वो आपको तब तक आशीष नहीं देगा जब तक आप उसे नहीं करते। मैं उन चीजों में से एक के साथ आज रात पुलपिट में हूँ जो मेरे ऊपर है। पिछले दो वर्षों से मेरी सभाएं वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने प्रभु को हताश किया है। उसने मुझसे कहा अफ्रीका में जाओ और उसके बाद भारत जाओ। यहाँ है ये, इस किताब के पिछले भाग में ठीक अभी लिखा हुआ है। प्रबंधक ने मुझे बुलाया, कहा उन अफ्रीकी लोगों को जाने दो, भारत तैयार है। पवित्र आत्मा ने मुझसे भेंट की, कहा तुम अफ्रीका जाओगे जैसे मैंने तुम्हें बताया था। और एक और वर्ष बीत गया और प्रबंधकों ने, मैं इसके बारे में भूल गया, उसने कहा हम भारत जा रहे हैं, टिकट पहले से ही यहाँ है। मैं वहाँ से निकल गया, इसे भूल गया था, जब तक मैं लिस्बन नहीं पहुँच गया। एक रात मैंने सोचा कि मैं मर रहा हूँ, अगली सुबह मैं निकलने लगा, स्नान गृह में नहाने के लिए चला गया। ओह मैं बहुत बीमार था, मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था वहाँ स्नान गृह में, वहाँ प्रकाश मंडरा रहा था। कहा मैंने सोचा कि मैंने तुमसे कहा था पहले अफ्रीका जाना। उस समय से लेकर मेरी सभाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। हालांकि मैं भारत गया था, वहां लगभग 5 लाख लोग खड़े हुए थे, लेकिन यह वो नहीं कर रहा था जो परमेश्वर ने कहा था। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी सभाएं तब तक सफल नहीं होंगी जब तक कि मैं सीधे वापस जाकर और उस चीज को सही नहीं कर लेता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, यह अफ्रीका है क्योंकि पहले आपको इसे करना है। वहां परमेश्वर का अनंत वचन रखा हुआ है, मैं इससे बेहतर जानता था लेकिन मुझे वापस जाना होगा। और मैं यह महसूस करता हूं कि यह आने वाला वर्ष वो समय है जब मैं प्रभु की सहायता से ढांचे से धीरे धीरे बाहर निकलूंगा। यह महिमा में पुराना सुसमाचार जो एक बतूल के पेड़ की तरह आसानी से ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो अब अपनी शाखाओं को फैलाने के लिए तैयार है। मैं इसे विश्वास करता हूँ, यह महान संदेश और महान बात। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से संसार को हिलाने देगा। आपको वही करना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। और अब्राहम सीधे आगे चला गया, अपने लोगों को अपने साथ लिया, उसने उन्हें प्रेम किया, यही मनुष्य का भाग है। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसने उसे दफनाया। उसके बाद उसका भतीजा था, फिर लड़ाई झगड़े और वाद विवाद छिड़ गए और अंत में लूत ने अपने चुनाव को किया और सदोम में चला गया। और आप अब्राहम पर ध्यान दे, उसने लूत के साथ वाद विवाद नहीं किया। उसने कहा हम आपस में भाई हैं, हमें बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम अपने सिर को ऊपर उठाकर और तुम किसी भी तरफ जाना चाहते हो चले जाओ, यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तुम उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा। यही मसीही रवैया है जो दूसरे व्यक्ति को सबसे अच्छा लेन देन देने की इच्छा को रखता हो, हमेशा उसके सामने रखे, उसे उसका चुनाव करने दें। ऐसा क्यों? किस बात ने अब्राहम को ऐसा करने को लगाया? वो जानता था कि उसे परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि कुछ भी हो वो संपूर्ण चीज का वारिस होगा। आमीन। तो फिर एक तंबू हो या झोपड़ा हो, हम भला क्यों परवाह करें? सारी चीजें हमारी हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये सब हमारा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। तो मनुष्य को सबसे अच्छा चुनाव करने दो यदि वो चाहता है। हो सकता है यही सब उसे कभी मिल जाएगा, लेकिन यह सब आपका है। आप प्रतिज्ञा के द्वारा उद्धार के वारिस हैं। ये सब आपका है। सो सारा देश की सबसे सुंदर स्त्री, वो अपने पति के साथ पहाड़ी पर वहीं बैठी थी जैसे उसे करना चाहिए था। उसने सादे, तो हो सकता है कि उसने सादे सूती के कपड़े पहने हो, या आप जो भी इसे कहना चाहते हैं, जबकि श्रीमती लूत ने करोड़पतियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसका पति नगर का मेयर था। वो एक न्यायी था जो फाटक में बैठा था। उसके पास हर एक चीज थी। सदोम और अमोरा में वहाँ सारी चलती हुई स्त्रियों की व्यर्थ गपशप की मंडियों में और ताश के पत्तों की पार्टियों में भाग लेती थी, लेकिन सारा अपने पति के साथ गरीबी की अवस्था में रहने से ज्यादा प्रसन्न थी और जानती थी कि वो परमेश्वर की इच्छा में थी, जो कुछ समय के लिए धन के आनंद को लेने से बढ़कर है, या धन संपत्ति की खुशी का आनंद लेने से बढ़कर है। यह सही बात है। यही है जब परमेश्वर भेंट करता है। और एक दिन आप जैसे ही निश्चित होकर आप गलत रास्ते को लेते हैं, यह किसी दिन इसके साथ आपको पकड़ लेगा। हो सकता है आप सोचें कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सोच सकते हैं कि आप बचकर निकल रहे हैं, लेकिन आप नहीं निकल रहे हैं। ऐसा दिखाई दे सकता है कि यह पूरी तरह सब ढका हुआ है, लेकिन यह ढका नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो जानता है कि आपका वास्तव में मतलब अपने अंगीकार से है या नहीं। वो जानता है कि क्या आपका वास्तव में मतलब है कि आप उस पर विश्वास करते हैं और बचाए गए हैं और उसे स्वीकार किया है और आप संसार की चीजों के लिए मरे हुए हैं और मसीह में जीवित हैं। वो यह जानता है। अब हम अब्राहम की ओर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि आप इस सच्ची आत्मा को देखें। ओह, सारी धन्य चीज यहाँ पर अनुग्रह है। मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे साथ बस कुछ क्षण के लिए निर्गमन के 14वें अध्याय को पढ़ें। अब पहली चीज ने जो जगह ली जब वे वहाँ गए, तो लूत संकट में था। क्यों? वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। और यदि आप संकट में पड़ते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में होते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। लेकिन यदि आप संकट में होते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं, वहाँ आपको केवल एक ही काम करना है, फिर से परमेश्वर की इच्छा में वापस आ जाएं। अब सारे राजा एक साथ इकट्ठा हुए और अनुमान लगाया कि नीचे के मैदानों में पानी उमड़ रहा है, और वे वहाँ नीचे जाकर उस छोटे पुराने सदोम अमोरा को हाथ में ले लेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। और उन्होंने किया। और जब वे वहाँ नीचे गए, उसे अपने अधिकार में कर लिया, तो वे लूत को अपने साथ ले गए। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ अब्राहम में मसीह की आत्मा को देखें। अब 14वें पद पर ध्यान दें। और जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई इसे समझा ये सुना कि उसका भाई बंधुआई में गया है, उसने उसके प्रशिक्षित दासों को जो उसके 318 कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ओह, अनुग्रह का क्या ही धन्य विचार है। अब्राहम जब उसका भाई हालांकि अनुग्रह से गिर गया था, हालांकि इस पिछड़ी हुई स्थिति में था, जब उसने सुना कि संसार ने उसे बंधुआ बना लिया है और उसे पकड़कर ले गए हैं उसे घात करने के लिए, अब्राहम ने मसीह की आत्मा के द्वारा कार्य किया। वो आया और उसके अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए कुटुंब में उत्पन्न हुए जो लोग थे, और उन्हें उनके पीछे लगाया और दान नगर तक उनका पीछा किया। और दान फिलिस्तीन का छोर है, दान से बेशेरबा तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। और यह एक मसीही नमूना है, जब उसने देखा कि संसार गिर गया था तो उसने शत्रु का अंत तक पीछा किया ताकि आदम की गिरी हुई जाति को वापस पाले। मैं चाहता हूं कि आप अगले पद पर ध्यान दें कि यहां आत्मा उसके जरिए से इतना मधुर बातें करता है। तो ठीक है, अब 15वां पद, और उसने सारे धन को और अपने भतीजे लूत को भी फिर से लौटा ले आया, और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब अब्राहम ने उस शत्रु का पीछा किया जो उसके भाई को लेकर गए थे, वो पूरे देश में दान तक उसका पीछा करता रहा और वो सब कुछ वापस लौटा ले आया जो उसने गिरने पर खोया था। क्या ही मसीह का सुंदर चित्र है जिसने स्वर्ग से सुना कि हम खो गए थे और आकर शत्रु का पीछा किया और अधोलोक तक चला गया और खोए हुए प्राणों को साथ में ले लिया और हमें वापस लौटा ले आया और हर एक चीज जो हमारे पास गिरने से पहले थी वो हमें लौटा दी। हम जो पीछे हटे हुए थे, हम जो परमेश्वर के पुत्र होने के लिए जन्मे थे, जो शैतान के पुत्रों में बिगड़ा हुआ रूप है, और बने और संसार की चीजों के पीछे चले गए और गलत काम किए और लालच से दौड़ने लगे जैसे लूत ने किया, हमारे जन्म सिद्ध अधिकार को बेचते हुए और संसार की चीजों के पीछे जा रहे थे। मसीह नीचे आया, हालांकि हम गिरे हुए थे, परमेश्वर आदि में जानते हुए कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं, इसलिए नीचे आकर और जीवन में से होते हुए, मृत्यु में से होते हुए, स्वर्ग लोग में से होते हुए, अधोलोक में से होते हुए शत्रु का पीछा किया और वहाँ महिमा में से होते हुए अधोलोक तक और उस अधोलोक की शक्तियों को और चाबियों को शैतान से ले लिया और फिर से जी उठा और मनुष्य जाति के लिए लौटा दिया, जिससे कि वह फिर से परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो सके। क्या वहाँ अब्राहम में आत्मा को देखते हैं, मसीह की आत्मा उसके साथ आती हुई? अब मैं चाहता हूँ कि आप आगे थोड़ा और ध्यान दें, जैसा कि हम पढ़ते हैं, जब वो कदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा उससे भेंट करने के लिए आया और राजा उसके साथ थे छावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है। वे चले गए, सदोम के राजा को वापस लाया गया, उसके भाई को वापस लाया गया, बच्चों को वापस लाया गया, और यहाँ राजा उससे भेंट करने के लिए निकले। और यहाँ भी वो जगह है जहाँ मैं अब संदेश को लेना चाहता हूँ, यहाँ देखना। और मेलकीसेदेक, शालेम का राजा, यरूशलेम का राजा, शांति का राजा, रोटी और दाख मधु लाया, और वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, और उसने उसे आशीष दी और कहा, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो। शेलम के राजा मेलकीसेदेक ने भी अन्य राजाओं के बीच स्वयं का प्रतिनिधित्व किया, और ध्यान दें, लड़ाई समाप्त हो गई थी, परमेश्वर का आत्मा अब्राहम में था, मसीह का जो उसके गिरे हुए भाई को वापस ले आया था, तब उसे उसकी सही स्थिति में लौटा लाया, वो सब जो उसने खो दिया था उसने इसे वापस लौटाया था, और जब वो लौटा लाया तो उसने रोटी और दाख मधु का प्रभु भोज लाया। क्या आप नहीं देख सकते कि वो मेलकीसेदेक कौन था? यह परमेश्वर था, लड़ाई के बाद प्रभु भोज को लेकर आया। अब आओ हम फिर से मत्ती 26:26 की ओर जल्दी से वापस जाएंगे और देखेंगे कि यीशु ने उसके बारे में यहाँ क्या कहा। मत्ती की किताब 26वें अध्याय और 26वें पद में हम बस यहाँ थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, मत्ती 26:26, तब यीशु अपने चेलों के साथ गुलगुता नामक एक स्थान में आया गुलगुट्टा मेरा मतलब है गदस्मनी, और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मैं सोचता हूं कि मैंने गलत पद को लिया है। मत्ती 26वें अध्याय का 26वां पद, यदि किसी ने निकाला है तो मेरे लिए पढ़ना, यदि आप इसे पा सकते हैं। एक मिनट रुकना, यह यहाँ एक सुंदर नमूना है। मैं नहीं चाहता कि आप इसे चूक जाएं। यहाँ हम हैं। यह मिल गया बहन। और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और इसे आशीष दी। यह क्या था? लड़ाई खत्म हो गई थी। उसे तोड़कर और अपने चेलों को दिया और कहा, लो और खाओ, यह मेरी देह है। उस मलकीसिदक को देखा, सैकड़ों वर्ष पहले जब उसने अब्राहम से भेंट की, युद्ध समाप्त होने के बाद उसने रोटी और दाख मधु दिया। और यहाँ यीशु चेलों को देता है, उसकी कठिन लड़ाई पूरी होने के बाद उसने उन्हें रोटी और दाखरस दिया। देखो, आने वाले भविष्य को देखें। और उसने कटोरा लेकर और धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नए नियम का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नए सिरे से न पीऊं। हम अब लड़ाई में हैं। हम अपने गिरे हुए भाई के पीछे हैं। उस परमेश्वर ने जगत की बुनियाद डालने से पहले अनंत जीवन के निमित्त पहले से ठहराए हुए को देखा, और संसार की चीजों ने उसे भवंडर में जकड़ लिया है। वो समाजों और वर्गों के अंदर है। वो और उसकी पत्नी, वे सड़कों पर ऊपर और नीचे चलते हैं, धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं और दावत करते हैं, शांति को पाने की कोशिश करते हैं। और हम में मसीह की आत्मा है, जैसे कि अब्राहम में होगी। हम उसके पीछे पीछे गए, परमेश्वर के सारे हथियारों के साथ। परमेश्वर के दूतों ने डेरा डाला। हम अपने गिरे हुए भाई को वापस लाने के लिए गए। और जब युद्ध अंत में खत्म हो जाता है, तब हम फिर से मलकीसिदक से मिलेंगे। धन्य परमेश्वर जिसने वहाँ अब्राहम को आशीष दी और उसे आशीष को दिया और उसे रोटी और दाख मधु प्रभु भोज दिया। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम उससे भेंट करेंगे। हम जो अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं, राज्य में मसीह के साथ संगी वारिस हैं, और मार्ग के अंत में उससे मिलेंगे। और जब लड़ाई पूरी हो जाती है, तब फिर से रोटी और दाख मधु को लेंगे। यह मलकीसिदक कौन है? वो एक जिसका कोई पिता नहीं था, कोई माँ नहीं थी, ना ही उसके दिनों की शुरुआत थी या ना ही जीवन का अंत था। वो वहाँ फिर से प्रभु बोझ देने के लिए होगा। आपने इसे समझा? जब हम रुककर किसी रात पर, जब हम एक साथ आते हैं और सेवकों के हाथों से प्रभु बोझ को लेते हैं, यह दर्शाते हैं कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं कि वह पर्दा, उसका शरीर जिसमें वो परमेश्वर पर्दा हुआ था, हम इसे एक प्रतिनिधि की नाई लेते हैं। हम संसार की चीजों के लिए मरे हुए हैं और आत्मा से नया जन्म लिया है, और हम सब विश्वासी मिलकर मसीह की देह के साथ चलते हैं। जब महान युद्ध समाप्त हो जाता है और हम फिर से मसीह के साथ आएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से उसके साथ प्रभु भोज करेंगे और परमेश्वर के राज्य में मांस को खाएंगे और दाख के लहू को फिर से पिएंगे। ओह, वहाँ मलकीसिदक है, यही है जो वो था। आइए अब हम यहाँ उसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ें। और 18वां पद, जब शालेम का राजा मलकीसिदक रोटी और दाख मधु ले आया, आपने इसे पकड़ा, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, और उसने अब्राहम को यह आशीष दी कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और उसने उसे आशीष दी और उसने आशीष और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। उसने मलकीसेदेक को दशमांश दिया। अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दसवां हिस्सा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ध्यान दें, जैसे पौलुस आगे बढ़ता है, अब आने वाले पाठ के लिए एक बुनियाद को देते हुए। और जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब सदोम के राजा ने कहा, अब तुम मुझे मेरे लोगों को वापस दे दो और तुम धन संपत्ति को अपने साथ ले जाओ। और अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने परम प्रधान परमेश्वर प्रभु की ओर मेरे हाथ को उठाया है। एल एलोन, आकाश और धरती का प्रभु, वहाँ परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूट और न जूती का बंधन। उसने पैसे को लेने के लिए कोई बड़े बड़े अभियान नहीं किए थे, वह तो केवल अपने गिरे हुए भाई को चाहता था। तुझसे न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, अब्राहम ने कहा, मैं एक जूती का बंधन तक नहीं ले जाऊंगा। उसने बहुत सा धन पाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा और असली सच्ची लड़ाई स्वार्थी उद्देश्यों से नहीं की जाती है। धन के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते, युद्ध उद्देश्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए लड़े जाते हैं। पुरुष सिद्धांतों के लिए युद्ध को लड़ते हैं। और जब अब्राहम लूट को लेने के लिए निकला, वो बाहर नहीं निकला क्योंकि वो जानता था कि वो राजाओं को बुरी तरह से पछाड़ सकता है और उनके सारे अधिकार को ले सकता है। वो अपने भाई को बचाने के सिद्धांत के लिए बाहर निकला। और कोई भी सेवक जिसे स्वर्ग के राजा की प्रेरणा से भेजा गया है, वह धन के लिए नहीं जाएगा, न ही वो बड़ी बड़ी कलीसियाओं को बनाने के लिए जाएगा, न ही वो संप्रदायों को प्रेरित करने के लिए जाएगा। वो केवल एक सिद्धांत के लिए जाएगा और वो है ताकि अपने गिरे हुए भाई को वापस लेकर आए, चाहे उसे प्रेमदान में एक पैसा भी मिले या न मिले, इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, सच्चे युद्ध सिद्धांतों के लिए लड़े गए हैं और छेड़े गए हैं, और न कि पैसों के लिए। और पुरुष और महिलाएं जो कलीसिया से जुड़ते हैं और कलीसिया में आते हैं लोकप्रिय होने के लिए, क्योंकि जॉनसिस वहाँ है, या वे अपनी कलीसिया को एक छोटी सी कलीसिया से एक बड़ी कलीसिया में बदल देते हैं। आप ऐसा एक स्वार्थी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और इसके पीछे सही सिद्धांत नहीं है। आपको युद्ध के मोर्चे पर खड़े होने के लिए इच्छा को रखना होगा। यहाँ इस आराधनालय में जब कुछ चीजें गलत होती हैं और आप पुरुष और आप स्त्रियाँ दौड़कर कहीं और चले जाएंगे, या वे बाहर ही रहेंगे जब तक थोड़ा विवाद या उपद्रव खत्म नहीं हो जाता, आपके अनुभव में कुछ तो गड़बड़ है। सही है, हमारे यहाँ एक नियम है, हमारे पास यहाँ एक व्यवस्था है। यह कलीसिया बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि यहाँ पर कोई है जो सही नहीं कर रहा है और आप सोचते हैं कि वे नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके पास जाकर और उससे बात करें। यदि आप उसे सही नहीं कर सकते हैं, तब किसी एक या दो और भाई को अपने साथ ले जाएं। यदि वो सही नहीं होता है, उसके बाद कलीसिया को बता दें और कलीसिया उसे छोड़ देगी और उसके साथ फिर कोई संगति नहीं रखेगा। और यीशु ने कहा, तुम जो कुछ धरती पर खोलोगे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। यही कारण है कि आपके पास बहुत अधिक परेशानियां हैं, क्योंकि आप बाइबल के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। यदि कलीसिया में कोई गड़बड़ी पैदा कर रहा है या कुछ तो गलत हो रहा है, ये आपका काम नहीं है कि आप उस पुरुष या उस महिला के विषय में बात करें। आपका ये काम है कि आप उस पुरुष या महिला के पास जाकर और उसे उसकी गलती को बताएं, और यदि वो आपकी नहीं सुनता है तो किसी और को अपने साथ ले जाएं। वो इसे नहीं सुनता, उसके बाद कलीसिया उसे छोड़ देती है। यीशु ने कहा, जो तुम धरती पर खोलते हो मैं स्वर्ग में खोलूंगा, जो तुम धरती पर बांधते हो मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। यही कलीसिया की सामर्थ है। ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ मेरा एक अच्छा प्रचारक मित्र, उसका एक लड़का था और वो लड़का कलीसिया जाया करता था, उसकी अपनी कलीसिया। वो एक ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ वो एक छोटी सी लड़की के साथ इधर उधर घूमने फिरने लगा, जो धूम्रपान करती थी और शराब पीती थी, और ऐसा जारी रहा। प्रचारक ने कहा, बेशक ये उसका व्यवसाय है, मेरा एक बहुत गहरा मित्र और एक अच्छा लड़का, लेकिन वह पूरी तरह किसी महिला के प्रेम में अंधा हो गया और उस महिला का विवाह हो चुका था। उसके कुछ बालक थे, उसका पति जीवित था। उसे डर था कि उनका जो होने वाला है वो लड़का उससे विवाह कर लेगा। तो वो भाई पूरी तरह टूट गया था और उसने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, मैं चाहता हूँ कि आप इस फलाना फलाना लड़के के पास जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें। मैंने कहा, भाई, मैंने प्रायः उसका नाम पुकारा, आपके पास एक बेहतर तरीका है, मुझे मत भेजिए। यदि लड़का नहीं मान रहा है और कलीसिया ने उसे गलत करते देख लिया है, तब यह कलीसिया का यह काम है कि इस काम को करे, यह कलीसिया के ऊपर छोड़ दो और कलीसिया उसके पास जाकर और उसे बताए। सो उसने एक भाई को लिया और उसके पास जाकर और उससे कहा, और वो भाई के पास वापस आया, वो जान ले कि वो अपने ही काम पर ध्यान दे कि वो भी वैसा ही करे। वो एक और भाई को लेकर गया, दो और को, दो डीकनों ने जाकर और लड़के को बताया, वो इसे नहीं सुनता है। उन्होंने इसे कलीसिया को बताया और वह बहुत रातों तक कभी नहीं आया। कलीसिया के सामने उसके पाप के बारे में बताए जाने के बाद कलीसिया के सामने स्वीकार करने के लिए नहीं आया। उसके बाद कलीसिया ने उसे छोड़ दिया और उसके लगभग एक महीने बाद वो निमोनिया से पीड़ित हो गया और डॉक्टर ने कहा उसके लिए दुनिया में जीने का कोई मौका नहीं है। उसके बाद वो घसीटते हुए वापस आया। परमेश्वर जानता है कि इसे कैसे करना है। हम इसे अपने आप में करने की कोशिश करते हैं, ओह, आपको फलाना फलाना को कलीसिया से बाहर निकाल देना चाहिए, आपको ऐसा वैसा या इत्यादि करना चाहिए। क्या आपने एक कलीसिया के रूप में इसके प्रति अपनी भूमिका को निभाया है? आप वहाँ हो, उन्हें घसीट कर वापस लाने का यही तरीका है। उन्हें एक बार शैतान के हवाले कर दो। वहाँ अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहे इस मनुष्य के बारे में पौलुस ने क्या कहा? वे उसे नहीं मना सके, कहा उसे शैतान के हवाले कर दो, देखो क्या होता है। और अगली पत्री में पौलुस ने लिखा, यह मनुष्य सीधा हो गया था। निश्चय ही परमेश्वर के पास इन चीजों को करने का एक तरीका है, यदि हम उसके नियमों का पालन करेंगे। तो यदि कलीसिया में कुछ गलत होता है, यदि यह सभा के लोगों के बीच में है, आप में से प्रत्येक भाई, यदि डीकन बोर्ड पर आप में से एक डीकन बर्ताव नहीं करता है, तो दूसरे डीकन आकर और बैठक को करें, भाई को समझाने की कोशिश करें, उससे बताएं कि वो क्या कर रहा है, या आप में से कोई एक सदस्य, चाहे आप जो कोई भी हो, फिर उसे उसके सामने लाया जाना है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो आकर पास्टर को बताएं, फिर उसे कलीसिया के द्वारा छोड़ दिया जाता है और फिर उसे एक असभ्य व्यक्ति और शराब खाने का मालिक होने दो। उसके बाद प्रभु को उस पर काम करते हुए देखें, देखिए तभी वो अपने आप से वापस आता है। यही है जब वो रेंगते हुए अंदर आता है, लेकिन हम इसे स्वयं से करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, ऐसा करने की कोशिश, अब सब कुछ जिस तरह से हमें ये करना चाहिए, हम कभी भी सफल नहीं होंगे। अब यह मल्किसेदेक, शालेम का राजा, राजकुमार, परम प्रधान का याजक, अब्राहम से भेंट की और उसे आशीष दी और उसे अपना दशमांश दिया। अब्राहम ने दिया और वो शालेम का राजा था, और उसने रोटी और दाख मधु को लाया, प्रभु भोज, और युद्ध के बाद अब्राहम को दिया, उन पुरुषों के जीतने के बाद। अब सारे युद्ध, जैसे मैंने कहा, सिद्धांतों के लिए लड़े जाते हैं। अब यदि आपकी कलीसिया में छोटी लड़ाई है, तो यह अवश्य ही सही सिद्धांत में होनी चाहिए। आपको सही चीज के लिए लड़ना होगा और कलीसिया के हर एक सदस्य को ऐसा ही करना चाहिए। अब यह शिक्षा कलीसिया के लिए है, यही है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, यही है जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही है जिसके लिए परमेश्वर का वचन है, जो कलीसिया के लिए है। इस कलीसिया में कभी भी कोई रुकावट न आने दें। यदि ऐसा होता है तो आप दोषी हैं, आप में से हर एक जन, और आप, आपकी भिन्न भिन्न कलीसिया में, यदि आपकी कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है तो आप दोषी हैं, क्योंकि आप उस कलीसिया के प्रमुख हैं। यह पास्टर पर नहीं है, यह डीकन बोर्ड पर नहीं है, यह आप पर निर्भर है कि आप उस भाई के पास जाएं और देखें कि क्या आप उसे समझा सकते हैं। यदि नहीं, तब दो तीन को साथ लेकर फिर से वापस आएं। वो इसे नहीं सुनेगा तो इसे कलीसिया को बताएं। तब उसे परमेश्वर के राज्य से निकाल दिया जाता है। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उसे वहाँ अस्वीकार करते हो तो मैं उसे यहाँ अस्वीकार कर दूंगा। यदि तुम इस क्रम में से होते हुए गए हो, उसके बाद वो शैतान को उसके लिए छोड़ देगा, उसे बना उसके देह को नष्ट करने के लिए, और तब वो वापस आ जाएगा। ये सही बात है, उसे वापस लाने का यही तरीका है। यदि वो परमेश्वर की संतान है तो वो वापस आ जाएगा। यदि वो नहीं है, इसलिए वो करता ही चला जाएगा, और तब शैतान उसे उसके सनातन स्थान पर भेज देगा। अब इसका जो मकसद है, यदि आप इसे बस किसी के प्रति लेते हैं तो ये भिन्न बात है, लेकिन यदि वो मनुष्य दोषी है और लूत वहाँ नीचे चला गया और पीछे हट गया, हालांकि वो एक इब्रानी था, वो नीचे चला गया था और पीछे हट गया था, वो अनुग्रह में था लेकिन वो इससे नीचे गिर गया था, और जब वो बाहर निकला और लूत बच गया था। ऐसा कभी भी न सोचे कि लूत को बचाया नहीं गया था, वो बचाया गया था, क्योंकि हर समय जब वो गलत स्थान पर था। बाइबल ने कहा कि सदोम के पापों ने उसके धर्मी प्राण को प्रतिदिन बेचैन किया। अब उसकी देह एक काम कर रही थी, और उसका अंत क्या था? उसने और भी अपमानजनक बात को लाया। उसकी पत्नी नमक के खंभे में बदल गई, उसकी बेटियों से उसके बच्चे थे। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितनी अपमानजनक बात को लाया, क्योंकि वो अनुग्रह से नीचे गिर गया था और अपने आप को फिर कभी भी वापस नहीं लाया, और परमेश्वर को उसे धरती पर से उठाना पड़ा था। लेकिन फिर भी वो एक गिरा हुआ भाई था, और अब्राहम ने वो सब कुछ किया जो वो उसे वापस लाने के लिए कर सकता था, और वो आत्मा जो अब्राहम में था, मसीह की आत्मा है जो आज कलीसिया में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ने क्या किया है, आप उसे फिर से मसीह की संगति में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है, आप बहुत कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ फिर से ध्यान देना चाहते हैं, जब हम इस मलकीसेदक के इस विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। सलेम का यह महान याजक और स्वर्ग और धरती का अधिकारी अब पहले उसे होना है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा सर्वदा याजक बना रहता है। अब ध्यान दें, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, वह पुत्र का परमेश्वर था। वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, मलकीसेदक नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र का पिता था। अब यह शरीर जो उसके पास था, उसने बनाया था, इसे एक स्त्री के जरिए से नहीं लाया गया था, तो उस सृष्टि किए गए शरीर के साथ वो नहीं कर सका कोई शरीर जो उसने स्वयं को प्रकट करने के लिए खुद बनाया था। कोई भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है, परमेश्वर एक आत्मा है। मरणहार आँखें उन चीजों को नहीं देखती हैं, जब तक ये आग के स्तंभ के रूप में ना हो, या जो कुछ भी ये है, या किसी मौजूद रूप में जिसे उन्होंने दर्शन के द्वारा देखा है, लेकिन वो परमेश्वर को स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट करना होता है। और परमेश्वर ने स्वयं को एक मनुष्य के रूप में अब्राहम के सामने प्रकट किया, उसने खुद को मूसा के सामने एक मनुष्य के रूप में प्रकट किया, उसने अपने आप को आग के स्तंभ के रूप में इज़राइल के बच्चों के सामने प्रकट किया, उसने खुद को एक पिंडुक के रूप में यूहन्ना के सामने प्रकट किया। आप देखो, उसने अपने आप को उन रूपों में प्रकट किया। जब वो अपने आप को एक मनुष्य के रूप में प्रकट कर रहा था, सलेम के राजा की नाई, उस यरूशलेम का, न ही धरती पर का यरूशलेम, लेकिन स्वर्गीय यरूशलेम का, उसने स्वयं को उस रूप में प्रकट किया, उसे परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था। अब परमेश्वर के पुत्र को एक स्त्री के जरिए से आना था, जिसकी यहाँ सृष्टि की जानी थी, एक स्त्री के गर्भ से, क्योंकि उसी चीज के जरिए से मृत्यु आती है, और वो सृष्टि के जरिए से नहीं आ सकता, जैसा कि आरंभ में परमेश्वर ने किया था। जब परमेश्वर ने आरंभ में पुरुष को बनाया, तो स्त्री का इससे कोई लेना देना नहीं था। परमेश्वर ने बस कहा, ऐसा होने दो, और एक मनुष्य मिट्टी में से आया। उसने उसे कहा, बिना किसी स्त्री के इसके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन स्त्री वो उस वक्त पुरुष में थी, और परमेश्वर ने स्त्री को आदम के फसली में से निकाला। क्या यह सही है? और उसके बाद स्त्री जाकर और मनुष्य को शरीर के संबंध के द्वारा लेकर आई, तो एक ही जरिया है जो परमेश्वर कर सकता है। वो उस दैविक शरीर में नहीं आ सकता, वो मलकीसेदेक के रूप में नहीं आ सकता। उसे एक मनुष्य की नाई आना था और उसे स्त्री के जरिए से आना था। तेरा बीज सर्प के सिर को कुचलेगा और उसका सिर तेरी एड़ी को डसेगा। इसे समझा? परमेश्वर को एक स्त्री के जरिए से आना था और वो आया। जब उसने अपने पुत्र मसीह यीशु के शरीर में वास किया, परमेश्वर मसीह में था, अपने आप को संसार के साथ मिला रहा था, और उसने अपने लहू को बलिदान के रूप में चढ़ाया और अपने जीवन को दे दिया कि मृत्यु के जरिए से वो आपको अनंत जीवन के लिए बचा सके। सो तब परमेश्वर आया और वो परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था। समझे? वो परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया मनुष्य था। अब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि यह मनुष्य अनंत है। परमेश्वर के पुत्र का आदि था, उसका एक अंत था, उसका एक जन्म का समय था, उसकी मृत्यु का एक समय था, उसकी शुरुआत भी थी और अंत भी था, उसके पिता और माता भी थे। इस मनुष्य का न तो पिता था और न ही माता, न ही समय की शुरुआत या अंत, लेकिन उसे बनाया गया था। यह मनुष्य जो मलकीसेदेक था, परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था। अब परमेश्वर का पुत्र जब वो संसार में आया था, एक स्त्री के रूप में, मतलब एक स्त्री के जरिए से एक पुरुष के रूप में, और मारा गया था, तीसरे दिन फिर से जी उठा हमारे धर्मीकरण के लिए। अब वो हमेशा के लिए बना रहता है, और जब तक वो शरीर बना रहता है, हम भी बने रहते हैं। और क्योंकि वो मिट्टी में से जी उठा है, हम उसकी समानता में जी उठेंगे। वहाँ वो सुसमाचार की कथा है। प्रभु का नाम धन्य हो। न ही वे दूत, न ही अलौकिक जीव, न ही पंखों का एक झुंड कि यहाँ वहाँ झुंड बनाते फिरें, लेकिन पुरुष और स्त्री, आमीन, उसकी समानता में खड़े होते हैं। जी हाँ श्रीमान, जैसा कि मैंने अक्सर ये बताया है, मैं इसे इस समय यहाँ फिर से कहता हूँ, यह उपयुक्त दिखाई देता है। मैं कंघी कर रहा था, जो मेरे लगभग 5 या 6 बाल बचे हैं, और मेरी पत्नी ने कहा, बिली तुम गंजे होते जा रहे हो। मैंने कहा, लेकिन मैंने उनमें से एक बाल को भी नहीं खोया है। उसने कहा, वे कहाँ पर हैं? मैंने कहा, मुझे बताओ कि वे बाल मुझे मिलने से पहले कहाँ पर थे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सही बात है। मैं एक लड़ने वाला मुक्केबाज हुआ करता था। मैं मजबूत और विशाल था, और मुझे लगता यदि आप इस कलीसिया को मेरी पीठ पर बैठाओगे तो मैं इसके साथ रास्ते पर से चलूंगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अब हर सुबह को उठता हूँ, मुझे एहसास होता है कि 40 वर्ष बीत चुके हैं। देखा, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था। मैं हर दिन कमजोर हो रहा हूँ। जब मैं अपने हाथों को देखता हूँ और सोचता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो मैं एक बूढ़ा मनुष्य होते जा रहा हूँ। मैं अपने कंधों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा वजन काफी बढ़ गया है। मैं हमेशा एक बेल्ट को 28 पर बांधता था, मैं अब 30 पर बांधता हूँ। देखिए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, सिकुड़ रहा हूँ। ये क्या है? मैं वही चीज को खाता हूँ जो मैं खाया करता था। मैं पहले से साफ सुथरा और बेहतर तरह से रहता हूँ, वही चीज। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय को निर्धारित किया है और मुझे इसे अवश्य ही लेना चाहिए। लेकिन धन्य विचार यह है कि उस दिन पर वो मुझे फिर से जिलाएगा, और हर एक बात जो मेरी 25 वर्ष की उम्र में थी, मैं हमेशा के लिए फिर से वैसा ही रहूंगा। आमीन। आप यहाँ हो। क्यों मुझे बुढ़ापा चिंतित करता है? मैंने शैतान को उसमें से वर्षों और वर्षों तक हराया है, ये जानते हुए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ये छोटी सी अवधि किसी भी तरह बस एक जरा सी छोटी चीज है। यदि हम केवल 60 या 70 वर्ष की उम्र के बने रहें, जो हमारा प्रतिज्ञा किया गया समय है, उस क्लेश और दुख के सिवा क्या है? यह क्या है? क्या आप उस ओर की उस महिमामय चीज के लिए इस नाशकारी घर की अदला बदली करेंगे? इसलिए धन्य हो प्रभु का नाम। मेरे अंदर किसी ने तो एक दिन उस मलकीसेदेक से भेंट की, और उसने मुझसे शांति की बात की, और उसने मुझे अनंत जीवन दिया। और इस जीवन का मतलब और कुछ नहीं, लेकिन एक भवन है जिसके जरिए से सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। मैं इसे पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, इन दो बाइबलों के साथ जो मेरे सामने खुली रखी हुई हैं। यदि मेरा परमेश्वर मेरे साथ होकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, और मैं उसके लिए और अधिक कुछ नहीं कर पाया। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि अपना ख्याल रख सकते हैं और वो मुझे ठीक अभी ले जाना चाहता है। आमीन। इससे बात खत्म हो जाती है। जी हाँ श्रीमान, यदि मैं 80 वर्ष का हूँ या यदि मैं 20 का हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ केवल एक ही चीज के लिए हूँ, प्रभु की सेवा करने के लिए। बस ऐसा ही है। यदि मैं अब भी सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूँ जैसे मैं अभी करता हूँ जब मैं 80 वर्ष का होता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं 40 का हूँ या 80 का हूँ। आज रात 80 वर्ष के बहुत लोग हैं और वहाँ बहुत सारे बच्चे मरेंगे, जबकि एक 80 वर्षीय व्यक्ति उनमें से कई बच्चों से अधिक जिएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये आपके उद्देश्य हैं, आपके सिद्धांत हैं और हम यहाँ प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए हैं। बस ऐसा ही है। यह जानते हुए कि यह जीवन एक भाप है जिसके बारे में मनुष्य बोलता है, जो एक समय था और फिर नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास अनंत जीवन है तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमें फिर से जिलाएगा, और जब दिन पूरे हो जाएंगे तब हम उसके साथ प्रभु भोज लेंगे, और जब वो कहेगा प्रभु के आनंद के अंदर प्रवेश करो जो दुनिया की नींव डालने से लेकर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। फिर यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कुछ हो या हमारे पास ना हो, चाहे हम जवान हो या बूढ़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्य बात तो ये है, क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा कर सकते हैं? क्या आप संसार की चीजों के लिए बिक गए हैं? क्या आपने मलकीसेदेक से भेंट की है जब से युद्ध समाप्त हुआ है? परमेश्वर धन्य हो, मैं लगभग 21 वर्ष का था और एक दिन मेरी इससे उससे और इत्यादि से लड़ाई हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मैं एक लड़ाकू बनना चाहता हूँ, या मैं एक जानवरों को जाल में फंसाने वाला बनना चाहता हूँ, या शिकारी बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। लेकिन मैंने मलकीसेदेक से भेंट की और उसने मुझे प्रभु भोज दिया, और तब से ये सदा के लिए स्थिर हो गया। हालेलुया, मैं उसके पक्ष में चला गया हूँ। मैं मार्ग पर आनंद मनाते आ रहा हूँ, और जब यह मार्ग के अंत में आता है और मृत्यु मेरे चेहरे की ओर घूरती है, जिस तरह से मैं अभी महसूस करता हूँ, मैं उससे कभी नहीं डरूंगा। मैं चलूंगा, उसके सामने चलना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि मैं उसे जानता हूँ जिसने प्रतिज्ञा को किया है। यह सही है कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। जब वो मरे हुओं में से बुलाता है तो मैं उनके बीच में से निकल आऊंगा। यह सही है, उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानते हुए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं बूढ़ा हूँ या मैं जवान हूँ, मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है या मैं भूखा हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह है या नहीं। चिड़ियों के बसेरे होते हैं और लोमड़ी की माद, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की जगह नहीं है, लेकिन वो महिमा का राजा था। हम आज रात राजा और याजक हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास हो या हमारे पास ना हो? जब तक हमारे पास परमेश्वर है, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, पवित्र आत्मा की संगति में हैं, उसके हाथ से आत्मिक प्रभु बोध को लेते हुए जो प्रमाणित हुआ है, मैं वो था जो मर गया था और फिर से जीवित हूँ और हमेशा के लिए जीवित हूँ। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हैं। ओह, उसका पवित्र नाम धन्य हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक तंबू या एक झोपड़ी, मैं भला क्यों चिंता करूं? वे वहां मेरे लिए महल को बना रहे हैं, माणिक और हीरे का और चांदी और सोने का। उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके पास बेशुमार दौलत है। मैंने उससे एक दिन भेंट की थी जब मैं लड़ाई से आया था। मैंने अपने विजय चिन्ह को वहां रख दिया। तब से मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो मेरे लिए उनसे लड़ता है। मैं बस उसके प्रतिज्ञा पर बस विश्राम करता हूँ, यह जानते हुए कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। यही बात मायने रखती है। और क्या मायने रखता है? हम क्या कर सकते हैं? क्यों विचार को लें? क्या ये आपके कद में एक हाथ ढील डोल को जोड़ सकता है? आप क्या परवाह करते हैं कि आपके बाल घुंघरालू हैं या आपके बाल हैं या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है यदि आप बूढ़े हैं, यदि आपके बाल सफेद हैं, यदि आपके कंधे झुके हुए हैं, यदि आपके नहीं झुके हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आमीन। यह तो सिर्फ एक अवधि के लिए है, थोड़े से समय के लिए, लेकिन यह तो हमेशा और हमेशा के लिए है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, आप कभी नहीं बदलेंगे और उसके ना खत्म होने वाले अनंत युगों से जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उससे भेंट की। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे एक दिन प्रभु भोज दिया। वही मेलकिसेदेक जिसने अब्राहम से भेंट की, जो राजाओं को खत्म करके आ रहा था। निश्चित रूप से स्वर्ग का परमेश्वर एल एलियोन, वो महान मैं हूँ, ना ही मैं था, मैं हूँ वर्तमान काल, और उसने उसे आशीष दी। यहाँ थोड़ा सा और आगे सुनना, ताकि हम विषय को एक साथ थोड़ा और नजदीक ला सकें। अब चौथा पद, अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था। मैंने भी अभी यही सोचा, अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था। वो परमेश्वर के पुत्र से परे है, परमेश्वर के पुत्र के पिता और माता थे पर उसके नहीं। परमेश्वर के पुत्र के समय की शुरुआत और समय का अंत था पर उसका नहीं था। यह कौन था? वो पुत्र का पिता था, यही है जो वो था। इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था। यहाँ तक कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, और वास्तव में लेवी के पुत्रों में से जो याजक गण का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश ले, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हों। अब इसे ध्यान दें यदि आप कुछ देखना चाहते हैं। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। अब्राहम के पास प्रतिज्ञा थी और इस मनुष्य ने अब्राहम को आशीष दी जिसके पास प्रतिज्ञा थी। यह कौन था? लेवी के पुत्रों ने अपने भाइयों को दशवांश दिया, मतलब उनके भाइयों ने उन्हें दशवांश दिया। उनके पास प्रभु की आज्ञा थी कि जो कुछ उनके भाइयों ने बनाया है उसका दसवां अंश उनके जीवन यापन के लिए दे, क्योंकि वे याजक गण थे। अब यह मेलकिसेदेक याजक पद को जाहिर करता है, जैसा कि आप ठीक वहाँ इस पर बात कर रहे हैं, यह सही बात है। लेकिन यह मनुष्य, यहाँ तक कि जिसने प्रतिज्ञा की थी, धरती पर का सबसे महान व्यक्ति अब्राहम, इस मनुष्य से मिला और उसे दशवांश दिया। उसे सबसे महान होना था। सुनना, और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। निश्चित रूप से देखो वह कौन है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं। यही है याजकों और प्रचारकों और इत्यादि के क्रम का याजक गण। मनुष्य जो दशवांश लेते हैं वे मरणहार हैं, समझे? पर यहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। एक मनुष्य दशमांश किसके लिए लेगा यदि उसके पास कोई, यदि वो ना ही कभी जन्मा था और ना ही कभी मरेगा और शुरू से अंत तक था और ना ही कभी कोई पिता या माता या वंश था और सारा आकाश और धरती और उसमें जो कुछ है उसका स्वामी है, तो वो दशमांश क्यों लेगा? वो अब्राहम से दशमांश देने के लिए क्यों कहेगा? आप देखते हैं कि दशमांश देना कितनी सख्त बात है। दशमांश सही है, हर एक मसीही कर्तव्य बद्ध है कि दशमांश को दे। यह सही बात है, इसे कभी भी नहीं बदला गया है। अब तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, जो दसवां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया। अब ओह, यहाँ कुछ तो है, क्योंकि जिस समय मेलकिसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। क्या लेवी अब्राहम लेवी का पर दादा था? और बाइबल ने यहाँ कहा कि लेवी ने दशमांश दिया जब वो अब्राहम की देह में था। धरती पर उसके आने से चार पीढ़ी पहले वो मेलकिसेदेक को दशमांश दे रहा था। प्रभु का नाम धन्य हो। फिर आप जो पहले से ठहराए जाने में या पूर्व नियुक्ति में विश्वास नहीं कर सकते हैं, और यहाँ चार पीढ़ी पहले, इससे पहले लेवी अब्राहम की देह से बाहर आए, मेलकिसेदेक को दशमांश दे रहा था। काश हमारे पास इसे वचन में होकर बताने का समय होता। यदि आप इसे यर्मिया 1:4 में से लेना चाहें, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में आकार लेने से भी पहले जानता था और मैंने तुझे पवित्र किया और तुझे राष्ट्रों का भविष्यवक्ता ठहराया। फिर आप क्या कह सकते हैं कि आपने किया? मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने किया? यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है। परमेश्वर हमें जगत की नींव डालने से पहले जानता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी नाश हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि वो परमेश्वर है तो वो जानता था कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं बचाया जाएगा। या तो वो कुछ भी नहीं जानता, यदि वो नहीं जानता था कि जगत की रचने से पहले कौन रैप्चर में जाएगा, तो वो परमेश्वर नहीं है। यदि वो अनंत है तो वो हर एक पिस्सू, हर एक मक्खी, हर एक जू को जानता है। हर एक जंतु जो कभी भी धरती पर होगा, धरती के आकार लेने से भी पहले वो जानता है। ये सही बात है, वो सब कुछ जानता है। जगत की नींव डालने से पहले वो हमें जानता था। बाइबल ने कहा कि वो हमें जानता था और हमें पहले से ठहराया था। आइए इसे बस एक बार समझ लेते हैं। आइए हम इफिसियों के पहले अध्याय पर वापस जाएं, पांचवा इफिसियों का पहला अध्याय। बस कुछ समय के लिए मैं यहाँ से बस एक मिनट पढ़ना चाहता हूँ, जिससे कि आप वास्तव में समझ सकें कि यह केवल कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कुछ तो ऐसा है जिसे परमेश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, समझे? अब इसे सुनिए बहुत ही नजदीक से। इफिसियों का पहला अध्याय, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, वही मनुष्य जिसने इब्रानी पत्री को लिखा है, इस पत्री को लिख रहा है संतों को। यह अविश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन संतों के लिए है। पवित्र जो संत लोग हैं, जो इफिसुस में हैं और जो मसीह यीशु में विश्वास योग्य हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने। अब चौथे पद को ध्यान से सुनिए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यहाँ ये हमें कौन है? वो कलीसिया। उसने हमें उसमें मसीह में पृथ्वी की बुनियाद डालने से पहले चुन लिया, जिससे कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, उसकी अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार। ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर आदि से जानता था कि किसे बचाया जाएगा और किसे नहीं बचाया जाएगा। निश्चय ही उसकी इच्छा नहीं थी कि किसी का भी नाश हो, लेकिन उसने यीशु को यहाँ केवल ये देखने के लिए नहीं भेजा कि क्या आप ऐसा व्यवहार करेंगे, खैर बेचारा यीशु, मुझे उसके लिए दुख है, हो सकता है कि मेरे लिए बेहतर है मैं बचूं और इसे स्वीकार करूं। नहीं महाशय, परमेश्वर आदि से जानता था कि कौन बचेगा और कौन नहीं, तो इसलिए वो जानता था कि कुछ लोग बचेंगे, इसलिए उसने यीशु को उन लोगों के लिए भेजा जिससे कि उन्हें प्रायश्चित करने को लगाए जिन्हें वो पहले से जानता था। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया और जिन्हें उसने बुलाया है और उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया है उसने भूतकाल महिमा बंद भी किया है। आप यहाँ हो तो ये आप नहीं हैं जो खुद को बचाते हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको बचाता है। आपने अपने आप को नहीं बचाया या ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपने बचाए जाने के योग्य किया हो। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने आपको बचाया। परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको बुलाया। परमेश्वर का पूर्व ज्ञान आपको जानता था। वो जानता था कि आप इस रात को इस कलीसिया में होंगे। इससे पहले दुनिया की नींव को कभी डाला गया था। यदि वो अनंत है, यदि वो नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। यदि वो सब कुछ जानता था तो वो परमेश्वर था। यदि वो सब कुछ नहीं जानता था तो वो परमेश्वर नहीं था। यदि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो वो सब कुछ कर सकता है। यदि वो सब कुछ नहीं कर सकता तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, वहाँ आप हैं। सो आप कैसे कह सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। यह तो आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने आपको उसके अनुग्रह के द्वारा बुलाया। आपने ध्यान दिया, सुना स्वीकार किया। ठीक है, आप कहते हैं भाई ब्रहणम यह इसे बहुत ही ढीला बनाता है, निश्चय ही करता है, आप आजाद हैं। खैर, वो व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप एक मसीही हैं, तो आप गलत नहीं करना चाहेंगे। वहाँ एक छोटी लड़की आज रात वहाँ पीछे बैठी हुई है, मेरी पत्नी। मैं उसे पूरी तरह से प्रेम करता हूँ जो मुझमें है। और यदि मैं जानकर कि मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ और इसके साथ रहता हूँ, और जाकर उसको बताता हूँ और कहता हूँ, मैडा मैंने गलत किया है, क्या आपको लगता है कि मैं यह करूँगा? यदि मैं उससे सही में प्रेम करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह सही बात है। अब यदि मैं कहूँ ओह मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों, वो मुझे तलाक दे देगी, और मैं ओह मैं एक प्रचारक हूँ, देखो कि इससे क्या होगा, यदि वो मुझे तलाक दे देती है तो इससे मैं पुलपिट से बाहर हो जाऊंगा। एक तलाकशुदा पुरुष, ओह मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन भाई मैं तो, यदि ऐसा है तो आप अभी भी नियमवादी हैं। यह नियमवाद आधार नहीं है कि मैंने उससे विवाह किया, यह नियमवाद आधार नहीं है जो मुझे पत्नी के प्रति सच्चा बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं इसे खुद की इच्छा से करता हूँ क्योंकि यह एक प्रेम संबंध है। और यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो आप उसी काम को करोगे, और यदि आप अपनी पत्नी से इस तरह प्रेम करते हैं फिलियो प्रेम के साथ, तो अगापो प्रेम के साथ, मसीह के साथ आपको क्या करना चाहिए, जो कि लाखों गुना शक्तिशाली है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि मैं जानता हूँ कि आज रात को बाहर जाकर और शराब पी सकता हूँ, यदि मैं जानता हूँ कि आज रात मैं इधर उधर भाग सकता हूँ और अनैतिक हो सकता हूँ, यदि मैं जानता हूँ आज रात यदि ऐसा करने की बात मेरे हृदय में है भी और मैंने जाकर इसे कर लिया, यह जानते हुए कि वो मुझे क्षमा करेगा, मैं इसे नहीं करूँगा। मैं उसके बारे में बहुत अधिक सोचता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, निश्चय ही, निश्चित रूप से। यही वो कारण है कि मैं अपने अनुभव को किसी भी संप्रदाय को नहीं बेचूंगा, नहीं महाशय, ना ही असेंबलीज ऑफ गॉड को, ना चर्च ऑफ गॉड, ना पिलग्रिम होलीनेस, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक। मैं इस अनुभव के लिए मेरे सामने रखे गए किसी के भी प्रस्ताव को नहीं लूंगा, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा कभी नहीं आता है, ये परमेश्वर के द्वारा आता है। नहीं महाशय, मैं किसी एल्विस प्रेस्ली के रॉक एंड रोल या कैथोलिक के उनके बेड़ियों के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को नहीं बेचूंगा, या उसका या कैडिलेक या उसके लाखों डॉलर और इत्यादि जो उसे हर महीने मिलता है। नहीं महाशय, मैं उससे प्रेम करता हूँ, और यदि मैं जब तक मैं उससे इस तरह से प्रेम करता हूँ, मैं उसके प्रति सच्चा बना रहूँगा। और यदि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे चुना है, तो उसने मुझ में कुछ तो रखा है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। मुझे मिस्टर इसलर याद है, आप सभी उसे जानते हैं, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, वो ठीक यहाँ आए हैं, जो इंडियाना राज्य के सिनेटर से हैं, यहाँ आकर उसके गिटार को बजाते। जब मेरी बच्ची मर गई थी, मेरी पत्नी मर गई थी, और वे सब यहाँ कब्रिस्तान में पड़े हुए थे, और मैं सड़क पर जा रहा था, मेरे हाथ मेरे पीछे थे, मैं रो रहा था। वो अपने छोटे पुराने ट्रक से कूद पड़ा और उसने मेरे चारों ओर अपने हाथ को रखा, कहा, बिली मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा, मैंने सुना है आप तब तक प्रचार करते हैं जब तक आप लगभग पुलपिट में गिर नहीं पड़ते। सुना है आप सड़क के कोनों पर और हर कहीं पर मसीह के लिए पुकार उठते हो। कहा, अब उसने आपके पिता को ले लिया, उसने आपके भाई को ले लिया, उन दोनों को छीन लिया, और वे आपकी बाहों में मर गए। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, आपका हाथ पकड़ते हुए आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई और आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई, और आप उसके लिए पुकार रहे थे कि वो आपकी सहायता करे, और उसने आपसे मुंह फेर लिया। आप उसके बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा, जो कुछ मेरे अंदर है मैं उससे प्रेम करता हूँ। यदि वो मुझे नरक में भेजता है तो भी मैं उससे प्रेम करूँगा, वो न्यायी है। मैं इसे नहीं कहता, 26 वर्षों ने इसे साबित किया है, यह सही बात है। यदि आप उससे प्रेम करते हो, ना ही कर्तव्य से कि मैं यह नहीं कर सकता और मैं वो नहीं कर सकता, इसे करने के लिए आप उससे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि उसने आपको चुना है, आपने उसे कभी नहीं चुना, उसने आपको चुना। आपने कहा, मैंने प्रभु को ढूंढा और प्रभु को ढूंढा। कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढता, यह तो परमेश्वर है जो मनुष्य को ढूंढता है। हो सकता है कि आप उसकी कृपा के लिए देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कि आप उसकी लालसा कर सकें, परमेश्वर को आपके स्वभाव को बदलना है, क्योंकि आप एक पापी हो, आप एक सुअर हो। यह सही बात है। और आप में से कुछ लोग कलीसिया जाते हैं और बस अपनी सदस्यता से जी रहे हैं, यहाँ बाहर जाकर और दुनिया में हर एक चीज करते हैं, और उसके बाद फिर भी वापस जाकर और कहते हैं, जी हाँ, मैं कलीसिया से संबंध रखता हूँ। खैर, यही परमेश्वर से संबंध रखने का एक लंबा रास्ता है, निश्चित रूप से। मैं नहीं, लेकिन आप देखते हैं लोग ऐसा करते हैं। आप बता सकते हैं, ओह, वे कलीसिया के अच्छे सदस्य हैं। यह सच है, आप अब भी एक कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं और उन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन आप एक मसीही नहीं हो सकते हैं और उन्हें करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आज सुबह, वो पुराना कौवा, यदि कभी कोई ढूंढी रहा था तो वो कौवा है। यह सही बात है। कौवा और पिंडुक एक ही जहाज पर बैठे हैं और एक ही बसेरे पर बैठे हैं, और पुराना कौवा तृप्त हो गया जब उसे छोड़ा गया था और उस कलीसिया से बाहर निकला कि वो वहाँ से निकलकर एक पुरानी मरी लोथ पर बैठ सकता है और काँव काँव और इस एक में से खाता है, घोड़े का मांस खाता है और गाय को खाता है, और जो कुछ भी ये है वो संतुष्ट होता है। लेकिन जब नूह ने पिंडुक को बाहर छोड़ा तो वो अपने पैरों को रखने के लिए विश्राम नहीं पा सका। उसे बस एक मरे हुए जानवर पर बैठने का उतना ही अधिकार था जितना कि कौवे को, लेकिन ये दो भिन्न भिन्न प्रकृति है। उनमें से एक आरंभ से ही वो एक पिंडुक था, वह आरंभ से ही एक कौवा था। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो पुराना कौवा यहाँ एक मरे हुए लोथ पर बैठ सकता है और आधा दिन खा सकता है। पिंडुक गेहूं के खेत में बैठकर और आधा दिन खाएगा, और कौवा ठीक वहाँ पर उड़कर जा सकता है और जितना चाहे उतना वो पिंडुक के भोजन को खा सकता है। वो उतना ही गेहूं खा सकता है जितना कौवा खा सकता है, मतलब जितना पिंडुक खा सकता है। लेकिन वो कौवा पिंडुक का खाना खा सकता है, लेकिन पिंडुक कौवे का खाना नहीं खा सकता। यह सही बात है। सो पुराना ढोंगी कलीसिया में आ सकता है और आनंदित हो सकता है और चिल्ला सकता है और प्रभु की स्तुति कर सकता है और इसी तरह से कर सकता है और सीधे वापस जाकर और संसार की चीजों का आनंद लेता है। लेकिन एक फिर से जन्म पाया हुआ मसीही ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसे ऐसी जगह पर विवश करता है, वो इसे नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप कलीसिया में जुड़ने वाले ऐसे ही एक मसीह हैं और ये और वो करना छोड़ते हैं और आपके अंदर वही इच्छा है, आपको दूसरी डुबकी की आवश्यकता है। यह बिल्कुल सही है। और आप स्त्रियों जो उनके साथ छोटे छोटे कपड़े पहन सकती हो और यहाँ बाहर सड़क पर होती हो और फिर अपने आप को एक विश्वासी कहकर बुलाती हो, आप एक विश्वासी हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम एक खराब उदाहरण हो। यदि आपके हृदय में सचमुच मसीह होता था तो आप इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचते। मैं परवाह नहीं करता बाकी की महिलाएं क्या करती है और बाकी की लड़कियां क्या करती हैं। आप भिन्न हो क्योंकि आप मसीह से बहुत अधिक प्रेम करते हो। मैंने एक दिन एक घर में एक स्त्री से बात की और उसने अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाया, कहा, आदरणीय ब्रैनम, मैं लगभग नग्न हूँ यहाँ मेरे घर में, मैं यहाँ वहाँ घूमती हूँ। मैंने सोचा तुम पर शर्म आती है, तुम्हारे अपने घर में मैं परवाह नहीं करता कि तुम कहाँ पर हो। सही बात है, एक महिला की तरह वस्त्र पहनो और व्यवहार करो जैसे एक महिला को करना चाहिए, तुम पर शर्म आती है। लेकिन तुम करते ही, जी हाँ, बाइबल ने कहा यदि तुम उन चीजों से, संसार की चीजों से प्रेम रखते हो तो मसीह का प्रेम तुम में है ही नहीं। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो बस अपने पूरे हृदय से और अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से, आप उन छोटी छोटी पुरानी गंदी घिनौनी बातों को दूर रखेंगे। यह सही बात है। और आप जो डीकन हैं और यहाँ आप जो दूसरे हैं जो यहाँ सड़क पर घूमते फिरते हैं और आपके गले की ओर बुरी नजर से देखते हुए और हर एक महिला की ओर देखते हैं, तुम पर शर्म आती है और अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहकर बुलाते हो। मैं जानता हूँ कि यह घायल कर रहा है, लेकिन बजाय इसके आप वहाँ हमेशा के लिए जलाए जाएं, यहाँ घायल हो। तो यदि आप उन चीजों को करते हैं, अब यदि कोई महिला आधे कपड़े पहनकर सड़क पर चलती है तो आप इसमें सहायता नहीं कर सकते। आप यदि आप देख रहे हैं तो आप उसे देखने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आप अपने सिर को घुमा सकते हैं। बाइबल ने कहा, जो कोई भी स्त्री की ओर कामुकता की नजर से देखता है वो अपने हृदय में पहले से उसके साथ वह विचार कर चुका है। मैं आपको कुछ बताता हूँ प्रिय बहन, आपको उत्तर देना होगा। मैं परवाह नहीं करता, आप लिली फूल की तरह शुद्ध हो सकती हैं। आपने अपने जीवन में असल में उस प्रकार का अनैतिक पाप कभी भी नहीं किया होगा, लेकिन यदि आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो आपको न्याय पर व्यभिचार करने का उत्तर देना होगा हर एक उस मनुष्य के साथ जिसने आपकी ओर देखा। बाइबल ने कहा, और सड़क पर चलती हैं, कौन दोषी है, वो पुरुष? नहीं महोदया, आप हैं। आपने खुद को इस तरह से प्रस्तुत किया। स्त्री को बड़ा स्थान मिला है, यह एक पवित्र अच्छा अद्भुत स्थान है, लेकिन उसे अवश्य ही अपने आप को उस तरह से रखना है, अपने कार्य स्थान को थामे हुए जैसे उसे चाहिए, एक माँ के रूप में, एक स्त्री के रूप में और नारीत्व के रूप में। जब नारीत्व टूट जाता है तो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और यही कारण है कि आज हमारा राष्ट्र तबाह हुआ है हमारी महिलाओं की अनैतिकता के कारण। यह बिल्कुल सही है, निश्चय ही यह हमारे बीच सड़ावट है जो इसे तोड़ रही है। आपको आवश्यकता है कि इस मलकीसेदेक से एक बार भेंट करें। आमीन। उसे आपको आशीष देने दो और आपको दाखरस रोटी अनंत जीवन देने दो, तब आप चीजों को अलग से देखेंगे, तब आप यह भिन्न होगा। आप नहीं चाहेंगे कि लड़के अमेरिकी भेड़िए आप पर सीटी बजाएं, भेड़िया सीटी बजाए, या जो भी आप इसे बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अलग होंगे, और आपको मुझे बताने का मतलब ये है कि आप ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और किसी और उद्देश्य के लिए वहाँ पर जाते हैं। आप कहते हैं क्योंकि यह कूलर या ठंडक है, आप कहानी को बना रहे हैं। यह कूलर या ठंडक नहीं पहुँचाते हैं, विज्ञान साबित करता है कि यह कूलर नहीं है, यह कामुकता है जो आप पर आई है। बहन, आपको इसका आभास नहीं है, मैं आपको चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सी नैतिक महिलाएं जितनी साफ सुथरी हो सकती हैं, वो है एक सभ्य छोटी महिला, उन बातों के साथ सड़क पर बाहर चलती हैं, यह जानने के लिए वो बेसुध है कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि कुछ पीछे हटे हुए प्रचारक को डर लगता है कि आपका पति कलीसिया में अपना दशमांश अब और नहीं देगा। यदि उसने कभी मलकीसेदेक से भेंट की होती तो वो उन चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो सुसमाचार को प्रचार करेगा। यदि ये उनकी पीठ की खाल को घायल भी कर देता है, कुछ भी हो वो इसका प्रचार करेगा। यह बिल्कुल सही है, आप ऐसा करते हैं, और आप इसे करते हैं क्योंकि कामुकता की भावना ऊपर है, और आप पुरुष जो अपनी पत्नियों को इस तरह के काम करने देते हैं, मुझे आपसे एक पुरुष के रूप में बहुत कम आशाएं हैं। यह सही बात है, यह सही बात है। अब उस पर कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि मतलब कोई क्षमा नहीं, क्योंकि यही सच है। कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी को सड़क पर जाने देता है और ऐसा व्यवहार करने देगा, भाई आपको तो स्त्री के कपड़े पहनने चाहिए। यह सही बात है, आपको, क्योंकि ओह, मैं यह नहीं कहता कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे उसे बदलना और फिर बदल करना होगा। मैं अब जो भी हूँ, यदि मैं कभी उसके साथ रह रहा हूँ जब वो ऐसा कर रही है, और ये बिल्कुल सही है। मेरी लड़कियाँ, हो सकता है वे तब ऐसा करें जब वे महिलाएं बन जाएंगी। मैं नहीं कहता कि वे नहीं करेंगी, मैं नहीं जानता, यह परमेश्वर की दया पर निर्भर है। मैं आशा करता हूँ कि वे नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करती हैं, तो वे एक धर्मी पिता की प्रार्थनाओं पर चलेंगी, वे किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर चलेंगे जिसने सही तरीके से जीने की कोशिश की। यदि वे कभी ऐसा करती हैं, यह सही बात है, लेकिन मैं सही जीना चाहता हूँ, सही सिखाना चाहता हूँ, सही होना चाहता हूँ, और उन्हें सही निर्देश दे सकता हूँ। यदि वे ऐसा करती हैं, तो नरक की ओर अपने रास्ते को बनाएंगी, मेरे प्रचार के ऊपर जाकर और मेरे मसीह के शीर्ष पर और मेरी चेतावनियों के शीर्ष पर। यह सही है, यदि वे कभी ऐसा करती हैं, निश्चित रूप से यह सही बात है। तुम पर शर्म आती है यदि आप कभी मसीह से आमने सामने मिलते हैं और वो आपको आशीष देता है और उस स्वीकृति के चुम्बन को आपके हृदय में रखता है। नरक में के सारे शैतान आपको फिर से कभी भी उन्हें पहनने को नहीं लगाएंगे। यह सही बात है, आप मृत्यु से जीवन में बदल गए हैं, और आपका प्रेम ऊपर की चीजों पर होता है, न कि धरती पर की चीजों पर। आमीन। बेहतर होगा कि मैं उस विषय को छोड़ दूं। यह नाजुक है तो ठीक है, लेकिन यह सच्चाई है तो ठीक है। जैसा कि हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। वास्तव में जो लेवी की संतान में से हैं, जो याजक गण के पद के दशवांश को पाते हैं और उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें, वे भले ही अब्राम ही के देह से क्यों न आए हो, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था अब्राम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी, और उसमें विरोध नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। और मैं सकता है मैं यह भी कहूँ कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसेदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। आपका मसीह के प्रति दृष्टिकोण बहुत बड़े प्रभाव को डालेगा कि आपके बच्चे क्या होंगे। आपका जीवन जो आप अपने परिवार के सामने जीते हैं, यह प्रभाव को डालेगा कि आपके बच्चे क्या होंगे, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वो बच्चों पर माता पिता के अधर्म का दंड देगा तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। अब बस कुछ ही क्षण बंद करने से पहले, और इसलिए यदि सिद्धता, वहाँ फिर से आपकी सिद्धता है, लेवीय याजक पद के द्वारा जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि वहाँ आकर दूसरा याजक मलकीसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। व्यवस्था नियमवादी, देखो ओह आपको ऐसा करना होगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मसीही नहीं हैं, यदि आप सबत को नहीं मानते हैं, यदि आप मांस खाते हैं, यदि आप इन कामों को करते हैं, ये सभी नियमवादी विचार। और आपको कलीसिया जाना ही होगा, यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको इसके लिए दंड का भुगतान करना है, आपको एक नोवेना या प्रार्थना की माला फेरना है। वो सारी चीजें बेकार की बातें हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के द्वारा, उसके पहले से ठहराए जाने के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से ठहराए जाने के द्वारा, पूर्व ज्ञान के द्वारा बुलाया, उसने बुलाया, उसने एसाव से घृणा की और याकूब से प्रेम किया इससे पहले कि दोनों में से एक का भी जन्म हो। यह सही है, यह परमेश्वर का पूर्व ज्ञान है जो इन बातों को जानता है। तब आप कहते हैं, तब सुसमाचार प्रचार करने का क्या फायदा? अब मैं आपसे ये कहूंगा, पौलुस ने उत्तर यह दिया, या मेरा मतलब यीशु ने दिया, यहाँ यीशु है, उसने कहा स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो इस एक तालाब या झील पर गया और जाल को फेंका, उसने खींचा, वहाँ से उसने कछुओं को पकड़ा था। उसके पास छोटे कछुए थे, उसके पास सर्प थे, उसके पास छिपकलियाँ थी, उसके पास मेंढक थे, उसके पास मकड़ियाँ थी, उसके पास लोथ खाने वाले जानवर थे, उसके पास मछली थी। अब मनुष्य बस जाल को खींच रहा है। यह सुसमाचार की तरह ही है, यह अब यहाँ है। मैं सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ, मैं बस जाल को फेंकता हूँ, मैं इसे खींचता हूँ, मैं कहता हूँ वो सब जो चाहे, जो कोई भी वो आए, यहाँ कुछ ऊपर आते हैं वेदी पर, वे सभी वेदी के चारों ओर बने रहते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वो रोते हैं, मैं किसी एक को भी नहीं जानता। यह मेरा काम नहीं है, मुझे न्याय करने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन वहाँ कुछ है जो मेंढक है, वहाँ कुछ है जो छिपकली है, वहाँ कुछ ऐसे हैं जो सांप हैं, ये कुछ कछुए हैं, और वहाँ कुछ हैं जो मछली है। ये मेरा काम नहीं है कि न्याय करूँ, मैं कहता हूँ पिता यहाँ है जिसे मैंने खींच कर निकाला है। लेकिन आरंभ से ही वो मेंढक एक मेंढक था, मकड़ी पुरानी मकड़ी वहाँ बैठी होगी और थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखेगी, उन बड़ी आंखों को घुमाएगी, चारों ओर देखकर कहती है क्या आपको ये पता है, मैंने बस इसमें से उतना ही लिया है जितना मैं ले सकती हूँ। प्लॉप 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 वे निकल जाती हैं। पुरानी महिला सर्प सिर को ऊपर उठाकर और कहती है अच्छा तुम्हें पता है क्या, यदि वे इस तरह से प्रचार करेंगे छोटे कपड़े और इत्यादि पहनने के विरुद्ध यह मुझे लेता है, तो मैं उस पवित्र शोर शराबा करने वाले झुंड से दूर ही रहूंगी। बस इतना ही होना चाहिए था, तुम आरंभ से ही एक सर्प थे। यह बिल्कुल सही है, जी हाँ। और यहाँ पुराने मिस्टर विषधार मेंढक बैठे हुए हैं, उसके मुंह में उस बड़े बड़े सिगार के साथ एक बड़े सींग वाले टेक्सास के सांड के जैसे वहाँ खड़ा होता है और यहाँ वहाँ देख कर कहेगा, खैर इसने मुझे धूम्रपान करने के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया, मैं ठीक अभी इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। खैर तुम पुराने मेंढक, तुम आरंभ से ही वही थे। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। आपका स्वभाव साबित करता है कि आप क्या हो, आपका जीवन दिखाता है, दर्शाता है कि आप क्या हैं। और आरंभ में इसे देखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, इसे देखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। यदि मैं रॉय पशुवध करने वाले के यहाँ जाता हूँ, वो किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं कूड़े के ढेर पर सुअरों को कूड़े को खाते हुए देखता हूँ, मुझे इस विषय में कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, वो एक सुअर है। लेकिन यदि मैंने उस कूड़े के ढेर पर एक मेमने को देखा तो मुझे आश्चर्य होगा। समझे, चिंता मत करो, आप उसे वहाँ नहीं देखोगे, वो बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सही बात है। और एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो संसार की चीजों से घृणा करता है। यह सही बात है, क्योंकि यदि तुम संसार से या संसार की चीजों से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम में है भी नहीं। यदि मैं हर दिन महिलाओं के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ और आकर अपनी पत्नी से कहता कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो वो जान जाएगी कि मैं झूठा हूँ। मेरा चाल चलन मेरे शब्दों से अधिक जोर से बात करेगा। निश्चित रूप से मैं उसे साबित करता हूँ कि मैं उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं उसके प्रति सच्चा नहीं हूँ। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे प्रेम करती है, और हर बार जब मैं चला जाता हूँ तो वो किसी और के साथ चली जाती है। यह साबित करेगा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती। सही है, उसका चाल चलन इसे साबित करता है। मैं परवाह नहीं करता कि वो मुझे कितना भी बताने की कोशिश करती हो, बिल मैं आपसे प्रेम करती हूँ और दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो एक झूठी है। और जब आप कहने की कोशिश करते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ और दुनिया की चीजों को करते हैं, परमेश्वर जानता है कि आप आरंभ से ही एक झूठे हैं। तो क्यों एक पुराने आधे अधूरे अनुभव को स्वीकार करने का क्या फायदा, और इसी तरह से कुछ और, जबकि स्वर्ग के बड़े बड़े आसमान पूरी तरह वास्तविक चीज से भरे हुए हैं। आप भला एक अभागे तथा कथित आधे अधूरे अधपके कहलाने वाले मसीही क्यों होना चाहते हैं, जबकि आप परमेश्वर के सच्चे फिर से जन्मे संतान हो सकते हैं। आपके हृदय में स्वर्ग की आनंद की घंटियां बज रही हैं, आनंद करते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यीशु मसीह में से होते हुए विजयी जीवन को जीते हुए, ना ही इसे खुद से करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि आप आरंभ में ही असफल हो जाएंगे। लेकिन उसे ले, यह उसका वचन है, और उस पर विश्राम करो, जो उसने कहा वो सत्य था, और उस पर विश्वास करें और उससे प्रेम करें, और वो आपके हर एक कार्य को ठीक आपके लिए सही कर देगा। ऐसा ही है, यही वो धारणा है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको फटकारना नहीं चाहता, लेकिन भाई थोड़ी सी फटकार को लेना ही अच्छा है। आप मेरे बच्चे हैं, समझे, और कोई भी पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करता है निश्चित रूप से उनका सुधार करेगा, या तो वो सही तरह का पिता नहीं है। क्या यह सही है? यह सही बात है। और इस पिता का केवल एक ही नियम होता है, और वो है घर का नियम, और परमेश्वर का केवल एक ही नियम है, और वो है उसका वचन। यदि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे। यह हमारा कर्तव्य है। यदि हमने कभी परमेश्वर से भेंट की है, ना ही इसलिए कि आप कहते हैं ठीक है मैं कलीसिया जाता हूँ और मुझे ऐसा करना होगा। आप दयनीय दशा में हो, ऐसा न करें। आप एक दयनीय घिसे हुए अधर्मी कौवे क्यों बनना चाहेंगे, जबकि आप एक पिंडुक बन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बस अपने स्वभाव को बदलना है, और आप अपने स्वभाव को बदलें, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने, परमेश्वर के साथ शांति में रहें। यीशु, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इब्रानियों 13:12-13, रोमियों 5:1, इसलिए हम विश्वास से धर्मी ठहरे, न ही हाथ मिलाने के द्वारा, न ही पानी के बपतिस्मे के द्वारा, न ही हाथ रखने के द्वारा, न ही चिल्लाने से, न अन्य भाषा बोलने से, न किसी भी अनुभूति से। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में से होते हुए हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति है। हमने मृत्यु से जीवन में प्रवेश किया है और नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि हमने केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया है और उसे हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार किया है, और उसका लहू आज रात हमारे पापों की प्रायश्चितता की नाई हमारे स्थान पर खड़े होने का कार्य करता है। पुराने नियम में वहाँ संगति करने के लिए केवल एक ही स्थान होता था, वो है लहू के नीचे। हर एक विश्वासी को लहू के नीचे आना था। जब लाल बछड़ा मारा गया था तो उसे ऐसा पाप बलि के लिए किया गया, उसे अवश्य ही लाल होना है। और निर्गमन का 19वां अध्याय, यदि आप में से कोई इसे पढ़ना चाहता है, और उसे अवश्य ही लिया जाना है, खुर सब कुछ एक साथ जला देना है, और फिर उसे अलगाव का जल बना दिया गया था, इसे बिना फाटकों के स्थापित किया गया था, इसे शुद्ध हाथ से किया जाना था। इस बछड़े का लहू पहले सभा के लोगों के लिए चला गया और द्वार पर 7 बार थपथपाया गया, और अब हर एक अशुद्ध व्यक्ति जो आगे चल रहा है पहले अवश्य ही पहचान करना है और उस लहू को देखना है, और इसे समझें कि केवल उस लहू के नीचे संगति है। केवल यही वो स्थान है जहां आराधना करने वाले वास्तव में आधिकारिक रूप से आराधना कर सकता था, जो लहू के नीचे था। उसके बाद पहली बात जो उसे करना था, इससे पहले वो लहू के नीचे आए, उस पर अलगाव के जल को छिड़का जाना था और अशुद्ध को शुद्ध किया जाता है। और उन्होंने अलगाव के जल को लेकर इसे मुसाफिर मनुष्य पर छिड़का और उसे उसके पापों से अलग कर दिया, और उसके बाद वो लहू की इन 7 धारियों के नीचे चला और बाकी के विश्वासियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में संगति की। इसे करने का केवल एक ही तरीका है, ना ही हाथ मिलाना, ना ही कलीसिया में जुड़ना, ना ही बपतिस्मा के द्वारा, ना ही भावनाओं के द्वारा, लेकिन अलगाव के जल पर चलें, विश्वास के द्वारा यीशु के सिर पर हाथ रखें और कहें, मैं पापी हूँ और आप मेरे स्थान पर मर गए, और मुझ में कुछ तो है जो बताता है कि आप मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करेंगे, और मैं अब आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस ओर लहू के नीचे चलें, उधर परमेश्वर के संतान के साथ संगति करें। ऐसा ही है, रोटी खाएं, दाखरस पिए और कलीसिया के साथ संगति करें। ओ, क्या वो अद्भुत नहीं है? क्या वो भला नहीं है? अब यह हो सकता है आपको अजीब सा लगे मित्र, लेकिन मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ और ये बातें किस लिए कह रहा हूँ? क्या मैं उन बातों को कह रहा हूँ ताकि खुद को किसी और से अलग बनाने की कोशिश करूँ? यदि मैं करता हूँ तो मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, और सुनना, वहाँ एक समय आ रहा है और अब है जब लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे नहीं पा सकते हैं। जब आप किसी सभा में जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप करते हैं, आप वहाँ जाते हैं और उनके पास कुछ अन्य जुबान के और अनुवाद करने वालों के झुंड होते हैं, और कोई तो उठकर वचन का हवाला देता है, और यह शारीरिक है। बिल्कुल, परमेश्वर ने हमारे लिए कहा, व्यर्थ दोहराव का उपयोग न करें। उसके बारे में क्या? यदि उसने इसे एक बार लिखा है तो आप इसे विश्वास करें, उसे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जुबान और अनुवाद सही है, लेकिन यह कलीसिया और किसी और के लिए एक सीधा संदेश होता है, न ही बस शारीरिक और इस तरह की चीजें, और फिर आप इन सब अन्य बातों में आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर एक दिन दो व्यक्ति चलकर, और एक पुरुष और एक पत्नी, और दूसरा पुरुष और एक पत्नी, हाल ही में युवा विवाहित एक स्थान पर मिशनरी के रूप में अफ्रीका जाने के लिए चलकर गए। किसी ने तो उठकर एक भविष्यवाणी की और अन्य जुबान को बोला और अनुवाद को किया कि उनकी किसी और की पत्नी थी, कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने गलत व्यक्ति से विवाह किया है, और वे दो लोग अलग हो गए और फिर से विवाह कर लिया। एक पुरुष ने दूसरे की पत्नी से कर लिया, और दूसरे की एक प्रमुख पेंटिकॉस्टल संप्रदाय में और मिशनरियों के रूप में अफ्रीका गए। भाई, जब आप विवाह की प्रतिज्ञा को लेते हैं, आप तब तक उस प्रतिज्ञा के लिए बंधे होते हैं जब तक कि मृत्यु आपको आजाद नहीं कर देती। बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से जब आप अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं तो यही बंधना होता है। वो सब बेकार है, और यह एक स्थान है जब तक आप कलीसिया में जाते हैं, यह या तो बहुत ठंडा और औपचारिक और सूखा होता है, इतना तक कि आत्मिक तापमान यंत्र शून्य से 50 नीचे चला जाएगा। लोग बस अचार पर मसे की तरह बैठे रहते हैं, खटास की नाई और रूखे रूखे और मुरझाए हुए। और यदि आप किसी को सुनते हैं कहीं तो दूर पीछे कोने में, हो सकता है थोड़ा गुड़गुड़ाते हुए कहे आमीन। कभी तो एक बार जैसे कि उन्हें दर्द हो रहा हो, वे सारे हंस की नाई उनकी गर्दन को तानेंगे कि यहाँ वहाँ दृष्टि करके देखेंगे कि किस बात ने जगह ली है। आप जानते हैं कि यह सच्चाई है। मैं यह मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह मजाक करने का स्थान नहीं है, यही सच्चाई है, सही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सुसमाचार की सच्चाई है। और दूसरी तरफ आपको एक बेहुदा बातों का झुंड मिलता है जो शारीरिक भावनाओं का झुंड है, ऐसा करता ही जाता है। और परमेश्वर का सच्चा वचन अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां आप शायद ही इसे कभी सुन सकते हैं। वो पुराना बीच का रास्ता सुसमाचार, मेरे मार्ग का उजियाला, हालेलुया, मेमने का लहू, परमेश्वर का प्रेम जो हमें संसार की चीजों से अलग करता है। क्या आपने अन्य जुबान में बोला है भाई, तो आपको यह नहीं मिला है? क्या आप चिल्लाए हैं इतना तक की ठंड का एहसास आपकी पीठ पर चढ़ गया हो? क्या आपने आग के गोले देखे? ओह, बेहुदा बात है, ऐसी कोई चीज नहीं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? और परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है कि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो, और आपका जीवन प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता, सज्जनता के फल को लाता है, तब आप एक मसीही हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या करते हैं। पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को बलिदान के रूप में जलाने के लिए दे सकता हूँ, मैं परमेश्वर के सारे रहस्यों को जानता हूँ, मैं अपने विश्वास से पहाड़ों को हटा सकता हूँ, मैं मनुष्यों और दूतों की तरह अन्य जुबानों में बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बारे में क्या है? पहला कुरिन्थियों 13, इसे देखें कि यह सही है या नहीं। अब देखें कि क्या यह कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 13 है। मैं सोचता हूँ कि यही है, या तो ठीक है, यह या तो पहला या दूसरा कुरिन्थियों में है। वहाँ पहला कुरिन्थियों 13 सही है। भले ही मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, दोनों ही जाति का जिसका अनुवाद किया जा सकता है और जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तब इसके साथ खिलवाड़ करने से क्या फायदा? भले ही मैं परमेश्वर के सारे रहस्यों को समझूं, आप सेमिनरियों में क्यों जाते हैं और इसके बारे में इतना कुछ जानने की कोशिश क्यों करते हैं? बेहतर होगा कि पहले आप परमेश्वर के साथ सही कर लें। निश्चित रूप से यदि मैं, ओ धन्य हालेलुया, आपको ऐसा मिला है तो आपके पास यहाँ तक सभा के लोग भी नहीं हो सकते जब तक कि आपके पास चंगाई अभियान या किसी प्रकार के चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे हों। एक कमजोर और व्यभिचारी पीढ़ी ऐसे ही चीजों के पीछे जाती है। आप इसके साथ क्या चाहते हैं? पौलुस ने कहा कि वो हर तरह की चीजों को कर सकता है, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी हटा सकता है, और फिर भी वो कुछ भी नहीं है। जहाँ अन्य जुबान है ये समाप्त हो जाएगा, जहाँ ज्ञान है ये लुप्त हो जाएगा, जहाँ भविष्यवाणियाँ हैं वो विफल हो जाएंगी। लेकिन जब वो सर्वसिद्ध है, ये आता है, तो वो सदा के लिए बना रहेगा, और प्रेम सिद्धता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई कपकपाता है, जो कोई हिलता डुलता है, जो बोलता है, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश न होगा परंतु उसके पास अनंत जीवन है। यह विश्वास करो बच्चों। वे इसे इतना उलझा हुआ बनाने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को और उन चीजों को, जब ये ठीक एक चीज के लिए उकसाता है, परमेश्वर में आपका व्यक्तिगत विश्वास ऐसा ही है, यह इसे बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ना ही महसूस होने के द्वारा, विश्वास के द्वारा ना ही भावना के द्वारा, विश्वास के द्वारा ना ही अनुभूति के द्वारा, लेकिन विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और उसके द्वारा, क्योंकि आपने प्रभु को ढूंढा, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा आपको पहले से जानता था और आपको अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे अपनी ओर न खींच ले, और जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। कोई मनुष्य उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, वे मेरे हैं, वे हमेशा के लिए बचाए गए हैं, मैंने उन्हें पाया है, कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता, और वही वो एक है जिन्हें मुझे देता है, वे मेरे प्रेम के उपहार हैं, और वे सब जिसे वो पहले से जानता है उसने बुलाया। वह किसी को नहीं बुलाता जब तक वो उसे पहले से नहीं जानता। जिन सबको उसने बुलाया उसने धर्मी ठहराया, जिन सबको उसने धर्मी ठहराया उसने महिमावंत भी किया है। तो आप देखो हम बिल्कुल सही विश्राम पर हैं। अब मैं जानता हूं कि यहां बहुत सारे नियमवादी हैं, आप में से 99%, लेकिन देखो यदि आप इसे केवल लेकर और समझेंगे कि मैं आपसे कुछ तो कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तब आप कहते हो खैर भाई ब्रैनम मैंने हमेशा सोचा है कि मुझे ऐसा करना था और मुझे वैसा करना था। वहाँ इसमें एक बहुत ही फर्क है भाई, आपको क्या करना है और आप क्या करना चाहते हैं। आप बचाए गए हैं इसलिए नहीं कि आपको इसके साथ एक चीज को करना था, आप बचाए गए हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको जगत की नींव डालने से पहले बचाया था। सुनो, यहाँ सुनना, बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में कहा, मैं आपको पहले से अब अंत तक लेके जाऊंगा। बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि जब वो पशु आया उसने पृथ्वी पर सबको भरमाया। ये पशु ने किया, उसने पृथ्वी पर सबको भरमाया जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे थे। क्या जब से बेदारी शुरू हुई क्या यह सही लगता है? अच्छा, जब से प्रचारक ने उस सामर्थ्य से भरे उपदेश का प्रचार किया, जब से वो मनुष्य चंगा हुआ, जगत की नींव के डालने से लेकर, यीशु कहाँ पर मारा गया था? कलवरी पर? नहीं महाशय, यीशु जगत की नींव डालने से पहले ही मारा गया था। परमेश्वर के मेमने की ओर देखो जो जगत की नींव डालने से पहले मारा गया था। परमेश्वर आदि में जब उसने पाप को देखा, उसने देखा कि क्या हुआ था, उसने वचन को बोला और यीशु जगत की नींव डालने से पहले ही मारा गया था और हर एक व्यक्ति बचाया गया था, बचाया गया। बाइबल के अनुसार जब मेमना परमेश्वर के मन में मारा गया था जगत की नींव डालने से पहले, तब आप उद्धार में सम्मिलित हुए थे। तो इसके विषय में आप क्या करने जा रहे हैं? यह परमेश्वर है, प्रभु का नाम धन्य हो, यह परमेश्वर है जो कार्य को करता है, न ही वो जो चाहता है, न ही वो जो दौड़ता है, लेकिन परमेश्वर जिस पर दया को दिखाता है। यदि यीशु को जगत की नींव डालने से पहले ही मारा गया था तो वास्तव में ऐसा घटित होने में 4000 वर्ष लग गए, लेकिन जब परमेश्वर ने इसे यहाँ पहले बोला तो परमेश्वर का हर एक वचन स्थिर है, यह अपरिवर्तनीय है, यह अचूक है, यह चूक नहीं सकता। और जब परमेश्वर ने जगत की नींव डालने से पहले पुत्र को घात किया तो वो बस उतना ही घात किया गया था जैसे वो कलवरी पर था। यह एक समाप्त हुआ उत्पादन है जब परमेश्वर ऐसा कहता है। और याद रखें, जब मेमना घात किया गया था तब आपका उद्धार बलिदान में सम्मिलित था, क्योंकि बाइबल ने कहा कि आपका नाम जगत की नींव डालने से पहले मेमने की जीवन की किताब पर लिखा गया था। उसके बारे में क्या, तब हम क्या करने जा रहे हैं? यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है, यह तो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया है, यह परमेश्वर है जिसने आपको जगत की नींव डालने से पहले मसीह में चुना है। यीशु ने कहा, तुमने मुझे कभी नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें जगत की नींव डालने से पहले जानता हूँ, वहाँ आप हैं। तो देखिए, यह आप में से डर को निकाल देता है। ओह, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इसे थामे रख सकता हूँ, मैं इसे कर लूंगा, परमेश्वर धन्य है यदि मैं बस थामे रखूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थामे रखता हूँ या नहीं, यह ऐसा है कि वो थामे रखता है या नहीं, यह तो वो है जो उसने किया है, ना ही मैंने जो किया, ये तो वो है जो उसने किया। जैसे छुटकारे की व्यवस्था के नीचे होता है, यह एक छोटी सी बात है जो मैं बंद करने से पहले कहना चाहता हूँ। क्या होगा यदि एक पुरानी घोड़ी ने एक छोटे से खच्चर को जन्म दिया और उस छोटे से खच्चर के दोनों कान खराब हो गए थे, उसकी आंखें भेंगी या तिरछी थी और घुटने टेढ़े थे, पैर तिरछे थे, उसकी पूंछ सीधे हवा में लटकी हुई है, क्या ही भयानक दिखने वाला जानवर है। क्यों, कोई भी यदि यह छोटा खच्चर सोच सकता है, कहता है अब एक मिनट रुकना, आज सुबह जब वे घर से बाहर आएंगे तो मैं तुमसे कहता हूँ मुझे पक्का सिर में मार मिलेगी, क्योंकि वे मुझे कभी भी भोजन नहीं देते। देखो मैं कितनी भयानक दिखने वाली चीज हूँ, मुझे तो यहाँ तक कभी मौका ही नहीं मिला है। तो ये सही है, आपको मौका नहीं मिला है, खैर मैं इस दुनिया में जन्मा था लेकिन यहाँ देखो मैं कितनी भयानक दिखने वाली चीज हूँ, तो मुझे 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 कभी भी मौका नहीं मिलेगा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। देखा, लेकिन क्या होगा यदि उसकी माँ को वास्तव में व्यवस्था में निर्देश दिया गया हो? वो कहेगी, पुत्र ये सही है, तुम पूरी तरह से अस्वस्थ हो और तुम धरती के भोजन को खाने के अनुकूल या फिट भी नहीं हो। यह सही बात है, तुम अनुकूल या फिट नहीं हो, लेकिन पुत्र किसी भी और तरह से तुम मेरे प्रथम हो और तुम जानते हो तुम जन्म सिद्ध अधिकार के नीचे जन्मे हो और याजक तुम्हें कभी भी नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारे नाम के लिए वहाँ एक निर्दोष मेमना होना है जिसमें कोई भी दोष न हो, जिसे तुम्हारे स्थान पर मरना है जिससे कि तुम जी सको। खैर वो छोटा खच्चर अपनी एड़ियों को ऊपर उछाल सकता है और एक अच्छे समय को बिता सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, क्योंकि उसे उस न्यायी याजक के द्वारा कभी भी नहीं देखा जाएगा। यह तो मेमना है जिसे याजक देखता है, ना ही खच्चर को, मेमने को, और यह मसीह है जिसे परमेश्वर देखता है, ना ही आपको, यह मसीह है। तो यदि उसमें कोई दोष नहीं है तो भला वहाँ कैसे दोष हो सकता है? वो भला दोष को कैसे पा सकता है जबकि आप मर चुके हैं और आपका जीवन परमेश्वर में से होते हुए मसीह में छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद है। वे जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वे पाप नहीं करते हैं क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता। जब उसके स्थान पर सिद्ध बलिदान जो रखा गया हो तो वो पाप कैसे कर सकता है? परमेश्वर कभी भी मुझे नहीं देखता है, वो मसीह को देखता है क्योंकि हम मसीह में हैं। अब यदि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ तो मैं उसके साथ जीऊंगा, वह मुझे तब तक कभी अंदर नहीं लाएगा जब तक वो नहीं जानता हो। यदि परमेश्वर आज मुझे बचाता है यह जानते हुए कि वो आज से 6 सप्ताह बाद मुझे खो देगा, तो वो अपने ही उद्देश्य को विफल कर रहा है। सही है, तब तो वो भविष्य को नहीं जानता है। यदि उसने मुझे बचाया यह जानते हुए, वह मुझे किस लिए बचाना चाहता है यह जानते हुए कि वो मुझे खोने जा रहा है? परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर उसे 2 सप्ताह में वापस ले ले जिससे कि वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। जब वो आपको बचाता है तो यह समय और अनंतता के लिए होता है। अब आप उत्तेजित हो सकते हैं और कह सकते हैं, ओह हाँ परमेश्वर धन्य हो, हालेलुया, मैंने अन्य जुबान में बोला, मैं चिल्लाया, मुझे वो मिल गया, हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मिल गया है, लेकिन भाई जब यहाँ नीचे कुछ आता है और आप मसीह के साथ लंगर होते हैं तब आत्मा के फल आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। हम उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा की गवाही को देते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। कृपया इसे प्राप्त करें मित्रों। मैं आपको पूरी रात यहीं रखूंगा इसी विषय पर बात करते हुए, मुझे ये पसंद है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं समय समय पर इस छोटे से आराधनालय में वापस आऊंगा। यदि परमेश्वर मेरे जीवन को बचाए रखता है, मैं आपको उस पवित्र विश्वास में जड़वंत और स्थापित देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सिद्धांत की हर एक छोटी छोटी हवा के झोंके से उछाले जाएं, जो आकर और आपको हिला दे और चलते रहे और उनके हाथों में जरा सा लहू व उनके चेहरे पर जरा सी बर्फ की परत या ऐसा ही कुछ और किसी प्रकार के उजाले को उनके सामने देखना और किसी प्रकार की एक स्वार्थी बात, जैसा कि बाइबल ने कहा, उसके मन में फूलता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह सही बात है। मैं चाहता हूँ कि आप वचन पर मजबूत बने। यदि ये प्रभु जो कहता है तो इसके साथ बने रहें, इसके साथ जिएं। यह इस दिन का उर्रीम तुम्मीम है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके द्वारा जिएं। यदि यह वचन नहीं है तो इसके बारे में भूल जाएं। परमेश्वर के लिए जिएं, मसीह के लिए जिएं। और यदि आपका हृदय यहाँ वहाँ भटकने लगे तो आप जानते हैं कि कुछ तो हुआ है, वेदी की ओर वापस जाएं और कहें, मसीह मुझे नया करें, मेरे उद्धार के आनंद को नया करें, मुझे वो प्रेम दीजिए जो एक बार मेरे पास था। यह प्रकट हो रहा है प्रभु, वहाँ कुछ तो ऐसा है जो मैंने किया है, मुझे फिर से पवित्र करें, स्थिर करें। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता और उसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी ओर देख रहा हूँ कि इसे मुझ में से बाहर निकाले प्रभु, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और उस वेदी से चलकर जाते हैं मसीह यीशु में एक नया व्यक्ति, तब आप अपने कलीसिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने याजक पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने पास्टर पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू पर निर्भर रहते हैं, अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, ऐसी कड़ी शिक्षाएं, यह समय है कि यह छोटी कलीसिया मांस को ले सकती है और अब और वचन का दूध नहीं। हम अब दूध में बहुत अधिक रहे हैं, बालक को उसकी बोतल को देते हुए, लेकिन हमारे पास तगड़ा मांस होना चाहिए क्योंकि दिन नजदीक आ रहा है। बड़ा संकट पूर्व समय आने वाला है और मार्ग में और अधिक परेशानी रखी हुई है और हम जानते हैं कि बेहतर समय कभी नहीं होगा। हम जानते हैं कि हम अंत में है। वचनों के अनुसार यीशु के आने तक समय और भी लगातार बदतर और बदतर होता चला जाएगा। हम उनसे इस जीवन में कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले जीवन में हम आपके वचन में से होते हुए उन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा कर सकते हैं, यदि वे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें और उसे अपनी प्रायश्चितता की नाई स्वीकार करें, जैसे वो एक उनके स्थान पर खड़ा हुआ था। जब वो एक जिसने उनके पापों को ले लिया, इसे अब प्रदान करें। होने पाए अविश्वासी विश्वासी बन जाए, होने पाए कलीसिया के स्वीकार करने वाले आज रात यहाँ जिन्होंने धर्म को स्वीकार किया है और ऐसे ही कलीसिया में रह रहे हैं, होने पाए वे परमेश्वर के साथ एक अनुभव को प्राप्त कर सकें, कि उनके हृदय में ऐसा प्रेम आए कि वे उनके पापों के लिए रोएं और अपने आप के लिए मर जाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म लें और नम्रता और दयालु प्रेम और आनंद और आशीष से भरे हुए हों। ऐसे जीवन को जीते हुए इतना तक कि वे इतने नमकीन बन जाएं कि वे अपने आसपास के लोगों को उनके जैसा बनाने की प्यास को तैयार करें। इसे प्रदान करें प्रभु, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं और हमारे सिर झुके हुए हैं। मैं सोचता हूँ आज रात यदि यहाँ कोई एक भी होगा जो कहे, भाई ब्रैनम, यदि मुझे उस समय परमेश्वर के संतुलन में तोला जाता था, मैं उस योग्यता को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा जिस पर आप आज रात बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में याद करें कि मैं अपने तौर तरीकों को बदलूं और परमेश्वर आकर और मुझ में से इस व्यर्थ की चीज को निकाले और मुझे एक सच्चा मसीही बनाए। क्या आप प्रार्थना के लिए अपना हाथ उठाएंगे? जैसे आप क्या आप चाहेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे वहाँ पीछे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे महाशय, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। जैसा कि आप अभी सोच रहे हैं प्रार्थना करते हुए, जैसा कि आप मानते हैं कि आप गलत रहे हैं और आप सही होना चाहते हैं, क्या आप यह कहते हुए अपने हाथ को उठाएंगे, परमेश्वर मुझे वो बनाइए जो मुझे होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे छोटी महिला, परमेश्वर मुझे वो बनाए जो मुझे होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहन, आपको 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 यहाँ पर दिन खत्म हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह कठिन है मित्रों, लेकिन बेहतर है कि अब सत्य को जान लें, अब धीरे धीरे प्रार्थना करें। वो ही केवल एक पवित्र है। स्वर्गीय पिता, जब शाम को सूरज डूबता है, रॉबिन चिड़िया अपने प्रियजनों के साथ पेड़ों में इकट्ठा होती है, सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, पिंडुक तारों पर ऊंचे उड़ जाते हैं, तो वे सर्प उन्हें रात भर परेशान नहीं करेंगे। वे वहाँ बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ कूं कूं करते हैं जब तक वे सो नहीं जाते, अतः सूरज ढल जाता है। किसी दिन हम उस घड़ी के लिए वहाँ आ रहे हैं, सूर्यास्त होने जा रहा है, मैं नहीं जानता कब प्रभु, लेकिन आज रात यहाँ लोग हैं जो मानते हैं कि वे गलत थे और वे उस स्थान पर आना चाहते हैं जैसे लिंकन उस बात के पास आया जब वो मर रहा था। उसने कहा, मेरे चेहरे को डूबते सूर्य की ओर कर दो, और उसने कहना आरंभ किया, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जैसे पुराने समय के मूडी ने कहा, क्या इसी को मृत्यु कहते हैं? यह मेरा अभिषेक का दिन है। हे अनंत, उन्हें अभी विश्वास के द्वारा ग्रहण कीजिए, जैसा कि वे वहाँ उनकी सीटों पर बैठे हुए हैं, आपने उनके हृदय में सीट पर खटखटाया है, यही उनकी वेदी है, यह आपके लिए ठीक अभी उन्हें ग्रहण करने का समय है। आपने कहा, वो जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी न निकालूंगा। और किसी दिन जब सूरज डूब रहा होता है, पत्नी या पति बिस्तर के पास खड़े होते हैं, डॉक्टर चले जाते हैं, हे पवित्र पवित्र, वो सुंदर मधुर शांति सूर्यास्त से ठीक पहले होती है, जब हम उठकर और कह सकते हैं, सूर्यास्त और सांझ का तारा और मेरे लिए एक स्पष्ट पुकार, और होने पाए वहाँ घेरे पर कोई शोक न हो, जब मैं समुन्दर में डाल दिया जाऊं, हे परमेश्वर उन्हें इस घड़ी के लिए प्रदान करें जबकि वे रुके हुए हैं, परमेश्वर की आशीष के उन पर आने के लिए रुके हुए हैं। सारे क्रोध को ले लीजिए, सारे संसार को उनसे दूर कीजिए और उनमें एक नए हृदय की सृष्टि करें। आपने कहा, मैं पुराने हृदय को निकाल दूंगा और मांस के हृदय को डाल दूंगा, और मैं अपने आत्मा को उस हृदय में डालूंगा, और वे मेरी विधियों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि यह एक प्रेम की व्यवस्था है और न ही कर्तव्य की, यह प्रेम की है, और प्रेम हमें इसे करने के लिए विवश करता है। यह एक प्रेम का कर्तव्य है ताकि हमें विवश करे, प्रेम का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप इसे हर उस हृदय को देंगे जिसने आज रात उनके हाथ को ऊपर उठाया है, और जिन्होंने उनके हाथ को नहीं उठाया होने पाए वे अब अनुग्रह के द्वारा आपको ग्रहण करने के लिए उनके हाथ को उठाएं, और आपकी आत्मा से भरने के लिए इस दीन मधुर शांत नम्र तरह से और अनुग्रह से भर जाएं, यहाँ से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में बाहर जाएं, किस तरह से पक्षी अलग गाने लगेंगे, किस तरह से हर एक जन अलग होगा इस घड़ी के बाद, हे परम प्रधान प्रभु। आप अब सिरों को झुकाए हुए हैं, आप जिन्होंने प्रार्थना में याद किए जाने के लिए हाथों को उठाया, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपसे अभी इस तरह से बात की है, न ही भावना के द्वारा, लेकिन बस वहाँ आप में वहाँ बात की है? आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है? आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप आज रात एक अलग व्यक्ति के रूप में कलीसिया से बाहर जा रहे हैं? क्या आप आज रात अपने हाथ उठाएंगे वहाँ पीछे? परमेश्वर आपको आशीष दे पुत्र, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, यह ठीक है। मैं आज रात इस कलीसिया से एक नए व्यक्ति के रूप में जाऊँगा, परमेश्वर के राज्य में नए जन्मे बालक। क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि यह वेदी पर आने का एक आदेश है, यह एक मेथोडिस्ट वेदी है, मेरा मतलब है एक मेथोडिस्ट आदेश, यह जॉन वेस्ली के दिनों में मेथोडिस्ट कलीसिया में स्थापित किया गया था, यह बाइबल के दिनों में कभी नहीं था। जितनों ने विश्वास किया उतने कलीसिया में जोड़े गए, आप कहीं भी हो, आप विश्वास कर सकते हैं, बाहर मैदान में हो, बाहर सड़क पर, कहीं पर भी हो, कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे आप मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, यह पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपके हृदय में आता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और आप मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हैं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब मैं उस युवक और उस स्त्री को चाहता हूँ जिसे मैं समझता हूँ कि उसकी पत्नी होगी, जिसने अपने हाथ को उठाया। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से अपने हाथ को उठाएं। वहाँ पीछे पुत्र जो लाल कोट के साथ है, और महिला कि उन्होंने मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठे हुए युवक ने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के नाई स्वीकार किया है। उसने महसूस किया है कि परमेश्वर ने उसे बचा लिया है, और अन्य लोग जो वहाँ पीछे हैं, जिन्होंने अपने हाथ को उठाया, उनके हाथ को फिर से उठाएं ताकि लोग वहाँ देख सकें, आपके साथ संगति कर सकें। उनके पास खड़े हुए जो उनके आसपास हैं, कोई तो उनसे हाथ को मिलाए, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है मेरे भाई, मेरी बहन। संगति यही है जो हम चाहते हैं, परमेश्वर आशीष दे। यहाँ कुर्सी पर बैठे इस युवक से हाथ मिलाएं, प्रभु उसके साथ हो, यह सही है। हम पवित्र आत्मा की संगति में आपका स्वागत करते हैं। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है और बपतिस्मा लेने की इच्छा रखते हैं, अपने रास्ते को बनाएं और पास्टर को इसके बारे में बताएं। अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो आज रात यहाँ के तालाब में पानी भी है, सब कुछ तैयार है। क्या आपने किसी भी तरह से बपतिस्मा लिया था? लेकिन यदि कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, तो तालाब तैयार है। बाइबल ने कहा, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है, वे जो आने पर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। आप उससे प्रेम करते हैं? अपने हाथ को उठाएं। ओह, क्या वो अद्भुत नहीं है? आपने इब्रानियों की इस किताब का आनंद लिया है? आप इसे पसंद करते हैं? जी हाँ, अद्भुत। अब यह सुधार है। ओह, यह कड़क है और यह स्पष्ट है, लेकिन हम इसे प्रेम करते हैं। इस तरह से हम इसे लेना चाहते हैं। इसके अलावा कोई जरिया नहीं होगा। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पौलुस के पास इस तरह से प्रचार करने का अधिकार है? पौलुस ने कहा, यदि कोई दूत आकर और किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार करे, तो वह शापित हो। यह सही है, इसलिए हम उसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। अब मैं पास्टर से कुछ समय के लिए यहाँ आने के लिए कहूँगा, हमारे सबसे बहुमूल्य भाई, भाई नेविल, और उसके पास आपको बताने के लिए कुछ शब्द होंगे। और अब यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम बुधवार की रात को आपसे मिलेंगे, और भाई ग्राहम स्नेलिंग के पास एक सामुदायिक रात के लिए जाने की व्यवस्था करेंगे, और फिर सातवें और आठवें अध्याय के साथ यहाँ प्रचार को जारी रखने के लिए होंगे। इस आने वाली बुधवार की रात को भाई नेविल,